आगे सबक देखिए भाई। व ईदा कानत जारिया तुम बैन रजुलैनी ज़ाम अहदुहुमा अन्नहा उम्म वलदिन लि साहिबिही व अनकरा दालिकल आखरु फहिय मौकूफतुन यौमन व यौमन तख्दिमुल मुनकिर इंद अबी हनीफत रहिमहुल्लाह وقال إن شاء المنكر استسعى الجارية في نصف قيمتها ثم تكون حرة لا سبيل عليها। भाई गुज़श्ता सबक में आपने मसला पढ़ा था कि दो अफराद ने मिलकर एक गुलाम को खरीदा और इन दोनों खरीदने वालों में से एक इस गुलाम का बाप है, तो जैसे ही गुलाम को खरीदेंगे तो ये जो बाप का हिस्सा है वो फौरन आजाद हो जाएगा। तो देखो इस बाप ने दूसरे शरीक के हिस्से को फासिद कर दिया, तो क्या वो दूसरा शरीक बाप से जमान ले सकता है या नहीं ले सकता? तो इमाम आजम अबू हनीफा रहिमहुल्ला फरमाते हैं कि वो शरीक आखर बाप से जमान नहीं ले सकता, इसलिए क्योंकि वो बाप के साथ इस इताक की इल्लत में शरीक था। और इताक की इल्लत क्या थी? दोनों का उस गुलाम को खरीदना, और जब खरीदेंगे तो मालिक बनेंगे, और जब बाप अपने बेटे का मालिक बनेगा तो वो आजाद हो जाएगा। तो दूसरा शरीक बाप के साथ इताक की इल्लत में शरीक है, तो मालूम हुआ वो बाप के इताक पर राजी है, चाहे उसे इलम हो या इलम ना हो, क्योंकि हुक्म का मदार जो है वो इल्लत और सबब पर होता है, और सबब के अंदर वो शरीक आखर बाप के साथ शरीक है। मालूम हुआ वो इस बात पर राजी है कि वो गुलाम का बाप इसके हिस्से को फासिद कर दे, जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि अगर बाप मालदार है तो शरीक आखर इससे जमान लेगा, और अगर बाप तंगदस्त है तो फिर वो गुलाम से सई करवा सकता है, जबकि इमाम साहिब के नजदीक वो शरीक आखर बाप से जमान नहीं ले सकता, अलबत्ता अपने हिस्से को चाहे तो वैसे ही आजाद कर दे और चाहे तो गुलाम से सई करवा ले। और फिर आपने ये भी पढ़ा कि ये जो दो शरीकों में से एक शरीक अपने हिस्से को आजाद कर दे और दूसरा शरीक इससे जमान ले ले क्योंकि मौतिक मालदार है, तो ये जो जमान है यह जमाने इफसाद है, और इसी का नाम जमाने इतलाफ भी है, और इसी का नाम जमाने जिनायत भी है। और जमाने इफसाद जो है ये तंगदस्ती और मालदारी से बदलता है, अगर वो मौतिक मालदार है तो उससे जमाने इफसाद लिया जाता है, और अगर मौतिक तंगदस्त है तो उससे जमाने इफसाद नहीं लिया जा सकता। जबकि इसके मुकाबले में दूसरा जो जमान है वो जमाने तमल्लुक है। मैंने बताया तमल्लुक का माना है मालिक बनना, तो उसके अंदर एक शख्स दूसरे शख्स के हिस्से का मालिक बन जाता है, तो लिहाजा वहां फिर उसको जमान देना पड़ेगा, और ये जमान तंगदस्ती और मालदारी से बदलता नहीं क्योंकि वो मालिक बन रहा है दूसरे के हिस्से का। जब मालिक बन रहा है तो उसे उसकी कीमत अदा करना पड़ेगी, तो ये है जमाने तमल्लुक, और इसी का नाम जमाने मुआवजा भी है भाई। तो साहिबैन और इमाम साहेब दोनों के नजदीक ये जो इताक के अंदर जमान लिया जाता है ये जमाने इफसाद है। और फिर उसके बाद साहिबे हिदाया ने बतलाया कि ये तो वो सूरत थी कि जब दोनों ने मिलकर गुलाम को खरीदा हो, तो फिर साहिबैन और इमाम साहिब का इख्तिलाफ है। साहिबैन फरमाते हैं जमान ले सकता है, और इमाम साहब फरमाते हैं जमान नहीं ले सकता। नीत इसी में मैंने तफसील बयान की थी कि इंसान किसी चीज का मालिक बनता है तो दो सूरतें हैं, या तो वो गैर इख्तियारी तौर पर मालिक बनेगा या अपने इख्तियार से मालिक बनेगा। तो ये जो साहिबैन और इमाम साहब का इख्तिलाफ है ये उस सूरत में है जब इख्तियारी तौर पर एक शख्स एक चीज का मालिक बन रहा हो, तो बै के जरिए भी इंसान अपने इख्तियार से चीज का मालिक बनता है, हिबा के अंदर भी कब्जा जरूरी है वरना हिबा ताम नहीं होता, तो वहां पर भी अपने इख्तियार से इंसान कब्जा करता है तो मालिक बनता है। सदके के अंदर भी फकीर जब उस सदके पर कब्जा करेगा तब मालिक बनेगा। मालूम हुआ सदके के अंदर भी फकीर अपने इख्तियार से उस सदके का मालिक बनता है। इसी तरह वसीयत के अंदर भी मूसा लहू जब उस चीज पर कब्जा करेगा तब मालिक बनेगा। तो मालूम हुआ बै, हिबा, सदका और वसीयत इन सब के अंदर इमाम साहेब और साहिबैन का इख्तिलाफ है। इमाम साहेब के नजदीक यहां पर चूंकि इल्लत के अंदर एक शख्स साथ शरीक है, लिहाजा मालूम हुआ अपने हिस्से के इफसाद पर राजी है, वो जमान नहीं ले सकता। और साहिबैन फरमाते हैं कि जमान ले सकता है अगर ये मौतिक मालदार है, तो साहिबैन फरमाते हैं इससे जमान लिया जा सकता है, और अगर ये मालदार नहीं है तो फिर गुलाम से सही करवाई जाएगी। भाई तो ये इख्तिलाफ है उन सूरतों में जब अपने इख्तियार से मालिक बने, और अगर वरासत के जरिए बाप जो है अपने बेटे का मालिक बनता है तो ये तो गैर इख्तियारी तौर पर मालिक बनना है, लिहाजा इस सूरत के अंदर बाप से जमान नहीं लिया जा सकता। बात समझ में आ गई। मैंने उसकी सूरत जिक्र की थी कि मसलन एक औरत है, उसका एक गुलाम है, और बाद में इसी औरत ने इसी गुलाम के बाप से निकाह कर लिया, तो यह गुलाम अभी भी इस औरत का गुलाम है, क्योंकि ये बाप का ममलूक नहीं है बल्कि ये उस औरत का ममलूक है, उसकी मनकोहा का ममलूक है। फिर बाद में इस औरत का इंतकाल होता है और उसने अपने पीछे इस खावंद को छोड़ा है जो इसके गुलाम का बाप है, और नीज अपने भाई को छोड़ा है उस औरत ने। तो ये औरत का भाई और ये गुलाम का बाप, ये दोनों वारिस हो गए इस गुलाम के। तो यहां गैर इख्तियारी तौर पर बाप वारिस हुआ है और मालिक बना है, लिहाजा इस सूरत में बिल इत्तेफाक ये जो उस औरत का भाई है ये बाप से जमान नहीं ले सकता, क्योंकि उस औरत के भाई का हिस्सा जो फासिद हुआ उसके अंदर बाप का कोई अमल दखल नहीं है भाई। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि अगर दोनों ने बाप और शरीक आखर ने अलग अलग बैअ की, पहले अजनबी ने गुलाम का कुछ हिस्सा खरीदा और फिर बाप ने उसी गुलाम का कुछ हिस्सा खरीद लिया जो उसका बेटा है, तो फिर इस सूरत के अंदर अब दोनों ने चूंकि इकट्ठा बैअ वाला अमल नहीं किया तो शरीक आखर बाप के साथ इल्लत के अंदर शरीक नहीं है। जब इल्लत में शरीक नहीं तो मालूम हो वो अपने हिस्से के इफसाद पर भी राजी नहीं, जब राजी नहीं है तो वो बाप से जमान ले सकता है भाई। और उसके बाद फिर साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर ये जो गुलाम है ये सारा एक ही आदमी का है और फिर उस आदमी से बाप ने निसफ हिस्सा खरीद लिया अपने बेटे का, तो खरीदते ही निसफ हिस्सा आजाद हो गया। लेकिन इस सूरत के अंदर भी इमाम साहब के नजदीक वो जो गुलाम का मालिक है वो बाप से जमान नहीं ले सकता, क्योंकि बाप ने ये बैअ उसी बाएअ के साथ ही तो की है, तो बाए जो है इस एताक की इल्लत में बाप के साथ शरीक है और ये उसकी रजामंदी की अलामत है, मालूम हो वो अपने हिस्से के इफसाद पर राजी है, लिहाजा वो बाप से जमान नहीं ले सकता, जबकि साहिबैन के नजदीक वो जमान ले सकता है अगर बाप मालदार है भाई। और उसके बाद फिर साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया था कि एक गुलाम है तीन आदमियों के दरमियान मुश्तरक है भाई, तो तीन आदमी उसमें शरीक हैं, उनमें से एक शरीक ने अपने हिस्से को मुदब्बर बना दिया। और इमाम साहब के नजदीक तदबीर के अंदर भी तकसीम हो सकती है, तो सिर्फ इसका हिस्सा मुदब्बर बन गया और बाकी दो जो हैं उनको इख्तियार है, वो अपने हिस्से को चाहें तो वो भी क्या बना दें, मुदब्बर बना दें, वो चाहें तो अपने हिस्से को मुकातब बना दें, वो चाहें तो अपने हिस्से को वैसे ही आजाद कर दें, वो चाहें तो गुलाम से सही करवा लें, वो चाहें तो उस मुदब्बिर से जमान ले लें, और वो चाहें तो मसले को इसी तरह चलने दें कि गुलाम का कुछ हिस्सा मुदब्बर है और दो हिस्से गैर मुदब्बर हैं भाई। तो उन दोनों को छह चीजों का इख्तियार है, तो फिर इनमें से जो दूसरा था उसने अपने हिस्से को आजाद कर दिया। जब अपने हिस्से को उसने आजाद कर दिया तो छह चीजों में से एक को उसने इख्तियार कर लिया, तो अब बाकी चीजों का उसे इख्तियार ना रहा, लिहाजा वो मुदब्बिर से जमान नहीं ले सकता, वो मुदब्बिर से जमान नहीं ले सकता। तो दूसरा शरीक जो है उसने अपने हिस्से को आजाद कर दिया, और हाल यह है कि यह मुदब्बिर भी मालदार है और यह मौतिक भी मालदार है। तो जो तीसरा शरीक है निसाकित, उसके हक में जमान के दो सबब जमा हो गए, एक मुदब्बिर की तदबीर और एक मुअतिक का एताक भाई। लेकिन उलमा फरमाते हैं, फुकहा फरमाते हैं कि ये जो साकित है ये सिर्फ मुदब्बिर से जमान ले सकता है, मुअतिक से जमान नहीं ले सकता, इसलिए क्योंकि मुदब्बिर से जो जमान लेगा वो जमाने मुआवजा है, मुदब्बिर इसके हिस्से का मालिक बन जाएगा, और मुअतिक से जो जमान लेगा वो जमाने इफसाद है, और जमाने मुआवजा और जमाने इफसाद में से जमाने मुआवजा जो है ये असल है और जमाने इफसाद जो है खिलाफुल असल है। तो जब तक असल पर अमल मुमकिन हो सके हम उसी पर अमल करेंगे, यानी जमाने मुआवजा पर ही अमल किया जाएगा, और जब जमाने मुआवजा पर अमल मुमकिन न रहे तो फिर उसके बाद जमाने इफसाद की तरफ रुजू किया जाता है। और यहां जमाने मुआवजा मुमकिन है कि वो साकित जो है मुदब्बिर से जमान ले ले, लिहाजा वो मुअतिक से जमान नहीं ले सकता। फिर उसके बाद मुदब्बिर जो है वो मुअतिक से जमान ले लेगा अपने हिस्से का, क्योंकि मुअतिक ने क्या किया, इस मुदब्बिर के हिस्से को खराब कर दिया, क्योंकि मुदब्बर गुलाम जो है वो तो अपने आका की मौत तक गुलाम ही रहता है, उसे खिदमत वगैरह ली जा सकती है, लेकिन जब दूसरे ने अपने हिस्से को आजाद कर दिया अब इस गुलाम से खिदमत भी नहीं ली जा सकती, अब इसने हर हाल में आजाद होना है, तो लिहाजा इस मुअतिक ने मुदब्बिर के हिस्से को फासिद कर दिया, लिहाजा मुदब्बिर जो है इससे गुलाम का जमान लेगा, लेकिन अपने मुदब्बर हिस्से का जमान लेगा, आम गुलाम का जमान नहीं लेगा। आपको साहिब हिदाया ने बतलाया कि मुदब्बर जो है उसकी कीमत आम गुलाम के मुकाबले में दो तिहाई होती है, यानी अगर आम गुलाम की कीमत 300 दिरहम है और इसको फिर मुदब्बर बना दिया जाए तो तीन में से एक हिस्सा खत्म और दो हिस्से कीमत बाकी रह गई, यानी अब इसकी कीमत 200 दिरहम रह गई, 300 दिरहम में से 100 दिरहम साकित और कीमत सिर्फ कितनी रह गई 200 दिरहम। तो ये जो मुदब्बिर है ये मुअतिक से इस मुदब्बर के सुलूस का जमान लेगा, क्योंकि मुअतिक ने इसके मुदब्बर हिस्से को फासिद किया है, और मुदब्बर है 200 दिरहम का तो उसका तीसरा हिस्सा यानी 66-67 दिरहम के लगभग जो है वो इस मुअतिक से जमान ले लेगा, जबकि साकित जो है वो इस मुदब्बिर से पूरे गुलाम का जो सुलुस बनता है उस वो जमान लेगा, और वो मसलन पूरा गुलाम 300 दिरहम का है तो एक सुलुस 100 दिरहम का बनता है, तो साकित मुदब्बिर से 100 दिरहम ले लेगा और वो मुअतिक से जमान नहीं ले सकता क्योंकि वो जमाने इफसाद है, और जो मुदब्बिर है वो मुअतिक से 66-67 दिरहम जो है वो जमान के तौर पर ले लेगा। अलबत्ता यहां इश्काल होता है कि मुदब्बिर ने जब जमान अदा कर दिया साकित को, मुदब्बिर ने जब जमान अदा कर दिया साकित को तो ये साकित के हिस्से का भी मालिक बन गया, और इस मिल्कियत की निस्बत की जाएगी तदबीर के वक्त की तरफ, यानी जिस वक्त इसने मुदब्बर बनाया था अपने हिस्से को उसी वक्त ये दूसरे सुलूस का भी मालिक बन गया था, जमान तो ये आज अदा कर रहा है लेकिन मालिक उसी वक्त बन गया था। तो मालूम हुआ जब मुअतिक ने एताक किया तो मुदब्बिर दो सुलूस का मालिक है, मुदब्बिर दो सुलूस का मालिक है, लिहाजा मुदब्बिर के लिए जायज होना चाहिए कि वो मुअतिक से दो सुलूस का जमान ले, लेकिन इमाम साहब फरमाते हैं कि नहीं, ये मुअतिक से सिर्फ एक हिस्से का जमान ले सकता है, दूसरे हिस्से का जमान नहीं ले सकता। तो एतराज समझ में आया भाई, तो उसका जवाब ये कि मुदब्बिर ने जब साकित को जमान दिया और वो साकित के हिस्से का भी मालिक बन गया तो इस हिस्से की निस्बत हो रही है तदबीर के वक्त की तरफ, तो बई एतबार एताक के वक्त मुदब्बिर दो सुलुस का मालिक है, लेकिन बई लिहाज देखा जाए कि इसका मालिक तो वो जमान देने के बाद बन रहा है और जमान तो वो एताक के बाद अदा कर रहा है, तो मालूम हुआ एताक के वक्त ये मुदब्बिर सिर्फ एक सुलुस का मालिक था। तो बाज एतबार से तवज्जो है, भाई देखो ना, ये मुदब्बिर जमान अदा करेगा तो उस हिस्से का मालिक बन जाएगा। मालूम हुआ जमान से पहले यानी एताक के वक्त वो दूसरे सुलुस का मालिक नहीं है, लेकिन इसी मिल्कियत की निस्बत की जाएगी तदबीर के वक्त की तरफ। बाई लिहाज देखें तो एताक के वक्त ये दो सुलुस का मालिक है। तो अदाए जमान को देखें, अदाए जमान को देखें तो एताक के वक्त मुदब्बिर एक सुलुस का मालिक, और माकबल की तरफ वो मिल्कियत मंसूब है तो उस एतबार से देखें तो मुदब्बिर एता के वक्त दो सुलुस का मालिक है। तो मालूम हुआ बाज एतबार से एता के वक्त ये दूसरे सुलुस का मालिक है और बाज एतबार से ये दूसरे सुलुस का मालिक नहीं है, यानी एता के वक्त। तो मालूम हुआ ये जो दूसरे सुलुस के अंदर मुदब्बिर की मिल्कियत है वो पूरे तौर पर साबित नहीं है एता के वक्त। बाज एतबार से एताक के वक्त वो मालिक है और बाज एतबार से एताक के वक्त वो मालिक नहीं, क्योंकि वो तो बाद में जमान अदा कर रहा है। तो इसलिए इसकी वजह से इस हिस्से का जमान नहीं लिया जा सकता। अगर ये एताक से पहले कतई तौर पर उस दूसरे सुलुस का मालिक होता फिर तो वो उस हिस्से का भी जमान ले सकता था, लेकिन यहां पर चूंकि ये जो दूसरे सुलुस की मिल्कियत है ये एताक के वक्त बाज एतबार से साबित है और बाज एतबार से साबित नहीं, लिहाजा ये उस हिस्से का जमान मौतिक से नहीं ले सकता। और बाज उलमा ने एक और बड़ा प्यारा जवाब दिया, वो फरमाते हैं कि ये जो साकित है ये मुदब्बिर से जमान ले सकता है लेकिन मौतिक से जमान नहीं ले सकता, क्योंकि मुदब्बिर से जमान लेगा तो वह जमाने मुआवजा है और मौतिक से जमान लेगा तो वह जमाने इफसाद है। तो लिहाजा ये जो साकित है ये मुदब्बिर से जमान ले सकता है मौतिक से नहीं, और जब मुदब्बिर ने जमान दे दिया साकित को तो मुदब्बिर अब उस साकित के कायम मकाम हो गया, और साकित जैसे उस हिस्से का जमान मौतिक से नहीं ले सकता था इसी तरह ये मुदब्बिर भी अब उस हिस्से का जमान मौतिक से नहीं ले सकता क्योंकि ये उस साकित के कायम मकाम हो गया है। बात समझ में आ गई। और फिर इमाम साहब ने यह भी बतलाया कि मुदब्बिर चूंकि दो हिस्सों का मालिक बन गया है तो दो हिस्सों की वला मुदब्बिर को मिलेगी, और एक हिस्सा का एताक मौतिक ने किया है तो एक हिस्से की वला मौतिक को मिलेगी। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि तदबीर के अंदर तजज्जी और तकसीम नहीं हो सकती, लिहाजा जब मुदब्बिर ने अपने हिस्से को मुदब्बर बनाया तो सारा गुलाम ही मुदब्बर बन गया, तो ये दूसरे दोनों के हिस्सों का भी मालिक बन गया, और जब दूसरे दोनों के हिस्से इसने फासिद कर दिए तो लिहाजा अब ये उन दोनों को जमान अदा करेगा, और ये जमान जमाने तमल्लुक है, ये दूसरे दोनों के हिस्सों का मालिक बन रहा है, लिहाजा ये तंगदस्ती और मालदारी से बदलता नहीं, हर हाल में यह जमान इसको देना पड़ेगा। और जब ये सारे गुलाम का मालिक बन गया है और इस गुलाम ने इसके मरने के बाद आजाद होना है तो सारी वला इसी मुदब्बिर ही को मिलेगी। बात समझ में आ गई। और फिर यहां पर दरमियान में इस इमाम साहब की जो दलील जिक्र की थी साहिब हिदाया ने, उस पर बाज उलमा ने एतराज किया था, उस पर बाज उलमा ने एतराज किया था। साहिब हिदाया ने इमाम साहब की दलील जिक्र फरमाई थी कि जो तदबीर के अंदर जमान है यह जमाने मुआवजा है, क्योंकि मुदब्बर जो है वह इंतकाल मिल्क को कबूल कर लेता है, और एताक के बाद गुलाम जो है वो या मुकातब होता है इमाम साहिब के नजदीक या आजाद होता है साहिबैन के नजदीक, तो वो इंतकाल मिल्क को कबूल नहीं करता। तो इस पर बाद शारहीन ने एतराज किया कि यहां साहिब हिदाया से गलती हुई है, इसलिए क्योंकि तदबीर के अंदर जब बात की तो तदबीर से पहले की बात की कि तदबीर से पहले गुलाम आम गुलाम है तो वह इंतकाल मिल्क को कबूल कर लेता है, जबकि एताक की बात की तो एताक के बाद वाली बात की, हालांकि एताक से पहले की बात करनी चाहिए थी, और एताक से पहले तो गुलाम पहले का मुदब्बर हो चुका है तो वो इंतकाल मिल्क को कबूल नहीं करेगा। बात समझ में आ गई। लेकिन साहिब हिदाया ने एताक से पहले की बात जिक्र नहीं की बल्कि एताक के बाद की बात जिक्र की कि एताक के बाद यह गुलाम जो है अब मुकातब है या आजाद है। भाई तो मैंने बतलाया कि नहीं, साहिब हिदाया पर यह एतराज दुरुस्त नहीं है। भाई ये इतनी छोटी सी बात है कि आम तालिब इलम भी इस बात को समझता है कि जब तदबीर से पहले की बात की जा रही है तो एताक से भी पहले ही की बात होनी चाहिए, एताक के बाद की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने बताया कि नहीं, दरअसल साहिब हिदाया यहां इमाम साहिब की तरफ से दलील जिक्र कर रहे हैं कि जो तदबीर के अंदर जो जमान होता है वो जमाने मुआवजा बनाना उसको मुमकिन है। वजह यह कि मुदब्बर जो है वो फिर भी गुलाम ही है, मौत तक उसने गुलाम ही रहना है, तो वहां पर इंतकाले मिल्क हो सकता है क्योंकि अभी भी वो ममलूक है भाई, अभी भी ममलूक है। तो लिहाजा एक आदमी ने अपने गुलाम को मुदब्बर बना दिया, अब वो दूसरे शरीक को जमान देगा तो दूसरे शरीक के हिस्से का भी मालिक बन जाएगा। तो मैंने बताया था कि मुदब्बर जो है सिर्फ मुदब्बिर की तरफ इंतकाले मिल्क को कबूल करता है, किसी और की तरफ नहीं। तो लिहाजा जो मुदब्बिर है वो अपने शरीक को जमान देगा और शरीक के हिस्से का भी मालिक बन जाएगा। तो मुदब्बर ने इंतकाले मिल्क को कबूल कर लिया, किसकी तरफ? मुदब्बिर की तरफ। लेकिन इस इंतकाले मिल्क की निस्बत भी तदबीर के वक्त की तरफ की जाएगी कि जिस वक्त ये इस गुलाम को मुदब्बर बना रहा था, यानी अभी बनाया नहीं था, उस वक्त ही ये दूसरे साथी के हिस्से का भी मालिक बन गया था। तो मुदब्बर चूंकि आम गुलाम है और तदबीर के बाद भी इसने आम गुलाम की तरह रहना है, सिर्फ इसको बेचा नहीं जा सकता, यह अलबत्ता यह ममलूक ही है। तो यहां पर इंतकाले मिल्क की गुंजाइश है कि तदबीर से पहले इंतकाले मिल्क की निस्बत कर दी जाए, जबकि एताक के अंदर यह गुंजाइश नहीं है। वजह यह कि जब एक शरीक ने अपने हिस्से को आजाद कर दिया तो दूसरे का हिस्सा साहिबैन के नजदीक वो भी आजाद हो गया। तो अब जब ये आजाद है तो माजी की तरफ निस्बत करके भी इसके अंदर इंतकाले मिल्क आप साबित नहीं कर सकते, क्योंकि आजाद के अंदर तो किसी की मिल्कियत नहीं होती। और इमाम साहब के नजदीक ये गुलाम जिसका कुछ हिस्सा आजाद हो गया, अब ये गुलाम मुकातब के दर्जे में हो गया, और ये मुकातब भी आम मुकातब की तरह नहीं है जो जहां अक़्दे किताबत को फसख किया जा सकता है। यहां पर अक़्दे किताबत के फसख की कोई सूरत ही नहीं है, इस गुलाम का आधा आजाद हो चुका है और आधे ने अभी आजाद होना है। तो यहां पर भी इंतकाले मिल्क की कोई सूरत नहीं, क्योंकि इसने ममलूक होकर रहना ही नहीं है, इसने आजाद होना है। तो एताक से माकबल की तरफ भी निस्बत कर दें, फिर भी इसके अंदर इंतकाले मिल्क आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसने ममलूक रहना ही नहीं है, इसने क्या होना है? आजाद होना है। बात समझ में आ गई? तो लिहाजा मालूम हुआ साहिब हिदाया यहां पर जिस एताक की बात कर रहे हैं वो इस एताक की बात नहीं कर रहे जो इस मसले में जिक्र हो रहा है, बल्कि मुतलक एताक की बात कर रहे हैं कि मुतलक एताक के अंदर जो जमान लिया जाता है उसको जमाने मुआवजा करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जमाने मुआवजा में जरूरी है कि दूसरा उस हिस्से का मालिक बने, मालिक बनेगा तो फिर वो जमान उसका मुआवजा हो जाएगा। लेकिन एताक की सूरत में तो एताक से माकबल की तरफ निस्बत करके भी इंतकाले मिल्क नहीं हो सकता, जबकि तदबीर के अंदर माकबल की तरफ निस्बत करके इंतकाले मिल्क हो सकता है। बात समझ में आ गए? तो लिहाजा बाज शारहीन का साहिब हिदाया पर एतराज करना दुरुस्त नहीं है भाई। अब आइए आज के सबक पर। وَإِذَا كَانَتْ جَارِيَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ زَعَمَ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ لِصَاحِبِهِ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْآخَرُ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ يَوْمًا وَيَوْمًا تَخْدِمُ الْمُنْكِرَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ سورة مسئلہ یہ ایک باندی ہے وہ دو آدمیوں کے درمیان مشترکہ ہے تو ان دو آدمیوں میں سے ایک کا گمان ہے कि ये जो बांदी है इसको मेरे शरीक ने अपनी उम्मे वलद बना दिया है जी। उन दो शरीकों में से एक का क्या गुमान है कि ये शरीक आखर ने इस बांदी को अपनी उम्मे वलद बना दिया है, यानी वो इसका इकरार करता है, इसका एतराफ करता है, और हाल ये है कि वो शरीक आखर इसका इनकार कर रहा है। तो एक बांदी दो आदमियों के दरमियान मुश्तरका है, उनमें से एक का गुमान है कि दूसरे ने इसको अपनी उम्मे वलद बना दिया है और दूसरा इस बात का इनकार कर रहा है। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि ये जो इकरार और एतराफ करने वाला है जी। ये अब इस बांदी से खिदमत नहीं ले सकता, क्योंकि इसने खुद एतराफ कर लिया कि दूसरे ने इसको अपनी उम्मे वलद बना दिया है, और उम्मे वलद जो है वो तो सिर्फ अपने आका की खिदमत करती है, किसी दूसरे का उसकी खिदमत में हक नहीं होता। तो लिहाजा ये मुकिर जो है ये उस बांदी से अब खिदमत नहीं ले सकता, और नीज ये मुकिर जो है उस मुनकिर से जमान भी नहीं ले सकता क्योंकि वो मुनकिर तो इनकार कर रहा है, वो तो कहता है मैंने इसको अपनी उम्मे वलद नहीं बनाया। तो ये मुकिर बांदी से खिदमत भी नहीं ले सकता और उस शरीके आखर से जमान भी नहीं ले सकता। अलबत्ता ये जो मुकिर है ये बांदी से सई करवा सकता है, ये बांदी से सई करवा सकता है क्योंकि इसके हिस्से की मालियत बांदी के अंदर बंद हो गई है, तो ये सई के जरिए अपनी हिस्से की कीमत वसूल कर सकता है। जबकि ये जो बांदी है ये एक दिन मौकूफ रहेगी यानी किसी की खिदमत नहीं करेगी, और एक दिन जो है ये उस मुनकिर की खिदमत करेगी, एक दिन ये उस मुनकिर की खिदमत करेगी। वजह यह कि उस मुनकिर का इस बांदी में इतना ही हक था, उस मुनकिर का, भाई जब दो आदमियों के दरमियान बांदी मुश्तरका है तो जाहिर सी बात है एक दिन एक की खिदमत करेगी दूसरे दिन दूसरे की खिदमत करेगी, तो दो दिनों के अंदर मुनकिर का एक दिन की खिदमत का हक था, तो वो खिदमत उसी तरह रहेगी। हर दो दिनों में से एक दिन बांदी उस मुनकिर की खिदमत करेगी और एक दिन मौकूफ रहेगी, किसी की खिदमत नहीं करेगी। उस मुकिर की खिदमत क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसका ख्याल है ये दूसरे की उम्मे वलद हो चुकी है, मेरा हक ही नहीं है इससे खिदमत लेने का, तो ये उसने खुद इकरार किया है। और आप जानते हैं कि अपने इकरार पर आदमी का मुआखजा किया जा सकता है, तो लिहाजा इसके साथ इसके गुमान के मुताबिक सुलूक किया जाएगा और ये उस बांदी से खिदमत नहीं ले सकता और नीर उस मुनकिर से जमान भी नहीं ले सकता क्योंकि वो तो उम्मे वलद बनाने का इनकार कर रहा है। भाई तो मुकिर जो है वो इस बांदी से सिर्फ सई करवा सकता है। तो बांदी एक दिन मुनकिर की खिदमत करेगी और एक दिन सई करेगी, पैसे कमाएगी और लाकर मुकिर के हवाले करेगी। बात समझ में आ गई? तो ये मजहब है इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्ला का। देखिए भाई किताब पर कहते हैं वह इदा कानत जारिया तुम बैना रजुलैनी, जब एक बांदी दो आदमियों के दरमियान मुश्तरका थी, ज़अमा अहदुहुमा अन्नहा उम्मु वलदिन लिसाहिबिही, तो गुमान किया उन दोनों में से एक ने कि ये उसके साथी की उम्मे वलद है, वह अनकरा जालिकल आखरू, और वह दूसरा शरीक जो है वो इसका इनकार कर रहा है, फहिया मौकूफतुन यौमन व यौमन तख्दिमुल मुनकिरा, तो एक दिन ये बांदी मौकूफ रहेगी यानी किसी की भी खिदमत नहीं करेगी, व यौमन तख्दिमुल मुनकिरा, और एक दिन ये मुनकिर की खिदमत करेगी, इंद अबी हनीफा रहिमहुल्ला इमाम साहिब के नजदीक। वकाला, और साहिबैन फरमाते हैं, इंशा अलमुन की रुस्तस अलजारिया तफी निस्फी कीमतिहा सुम्मत कूनु हुर्रतन ला सबील अलैहा। साहिबैन फरमाते हैं कि ये जो शख्स एतराफ कर रहा है कि मेरे शरीक ने इस बांदी को उम्मे वलद बना दिया है, तो ये बांदी इसी मुकिर की उम्मे वलद बन जाएगी, ये बांदी इसी मुकिर की उम्मे वलद बन जाएगी। साहिबैन फरमाते हैं ये इसी तरह है जैसे एक आदमी ने दूसरे आदमी से गुलाम खरीदा और गुलाम खरीदने के बाद मुश्तरी कहता है कि बाय ने इस गुलाम को बाय से पहले ही आजाद कर दिया था और बाय उसका इनकार कर रहा है। तवज्जो है सूरत क्या? एक आदमी ने दूसरे से गुलाम खरीदा और गुलाम खरीदने के बाद मुश्तरी कहता है कि बाय ने तो इस गुलाम को बेचने से पहले ही आजाद कर दिया था और बाय इस बात का इनकार कर रहा है। तो याद रखो हमारे अइमा फरमाते हैं कि इस सूरत में ये एताक इस मुकिर की तरफ से ही फिर शुमार किया जाएगा, ये एताक पलट कर इसी की तरफ आ जाएगा, गोया ये खुद इस गुलाम को आजाद कर रहा है। इसने दावा तो क्या किया है कि बाय ने आजाद किया था लेकिन बाय तो इनकार कर रहा है, तो ये इकरार किसकी तरफ पलट आएगा? इसे मुकिर की तरफ, और यूं समझा जाएगा कि इस मुकिर ने ही गुलाम को आजाद कर दिया है। भाई तो साहिबैन फरमाते हैं यहां पर भी इसी तरह है, एक शरीक ने कहा दूसरे ने इस बांदी को अपनी उम्मे वलद बना दिया है और दूसरा इसका इनकार कर रहा है, तो ये मुकिर का इकरार इसी के ऊपर पलट कर आ जाएगा और ये बांदी इसी की उम्मे वलद बन जाएगी, और ये बांदी इसी की उम्मे वलद बन जाएगी। जब ये इसी मुकिर की उम्मे वलद बन गई तो मुनकिर इससे खिदमत नहीं ले सकता, मुनकिर इससे खिदमत नहीं ले सकता क्योंकि ये मुकिर की उम्मे वलद बन गई है, और मुकिर खुद भी इससे खिदमत नहीं ले सकता अगरचे इसकी उम्मे वलद बन गई है, क्योंकि मुकिर का तो ये इकरार है कि मेरा इसकी खिदमत में कोई हक ही नहीं है क्योंकि दूसरे ने इसको अपनी उम्मे वलद बना लिया है। तवज्जो है? तो बांदी मुनकिर की भी खिदमत नहीं करेगी क्योंकि बांदी इस मुकिर की उम्मे वलद बन गई, और इस मुकिर की भी खिदमत नहीं करेगी क्योंकि मुकिर का तो यह ख्याल है कि मेरा इसकी खिदमत में कोई हक ही नहीं है जी। तो मुनकिर इसे अब खिदमत नहीं ले सकता। जब मुनकिर खिदमत नहीं ले सकता तो क्या वो इस मुकिर से जमान ले सकता है, क्योंकि इस मुकिर के इकरार की वजह से बांदी उसके उम्मे वलद बन गई है। मुनकिर की मालियत बांदी में बंद है ना, और यह बांदी किसकी उम्मे वलद बन गई, मुकिर की। तो मुनकिर की मालियत तो इसके अंदर बंद हो गई, तो मुनकिर क्या अब मुकिर से जमान ले सकता है? कहते हैं नहीं, मुनकिर इस मुकिर से जमान भी नहीं ले सकता क्योंकि मुकिर ने यह तो नहीं कहा था कि यह मेरी उम्मे वलद है। अगर वो ये कहता कि यह मेरी उम्मे वलद है फिर तो उससे जमान लिया जा सकता था, लेकिन उसने तो क्या कहा है कि यह इस मेरे शरीक की उम्मे वलद है, तो लिहाजा मुनकिर उससे जमान भी नहीं ले सकता क्योंकि उसने कोई दावा नहीं किया इस बांदी के अपना उम्मे वलद होने का। भाई अगर वो ये दावा करता फिर जमान लिया जा सकता था। तो मुनकिर बांदी से खिदमत भी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि ये मुकिर की उम्मे वलद बन गई, और मुनकिर इस मुकिर से जमान भी नहीं ले सकता क्योंकि मुकिर ने यह तो नहीं कहा कि यह मेरी उम्मे वलद है, उसने तो कहा था यह तुम्हारी उम्मे वलद है। अगरचे वह इकरार पलट कर फिर उसी मुकिर पर चला गया, वो उसी की उम्मे वलद बन गई, लेकिन बहरहाल उसने ये तो जुबान से नहीं कहा कि ये मेरी उम्मे वलद है। तो मुनकिर उस बांदी से खिदमत भी नहीं ले सकता और इस मुकिर से जमान भी नहीं ले सकता। हां, इस बांदी से सही करवा सकता है क्योंकि उसके हिस्से की मालियत इस बांदी में बंद हो गई है, तो बांदी सही करेगी, कामकाज करेगी और उस मुनकिर के हिस्से के पैसे अदा करेगी, और सिर्फ उसके हिस्से के पैसे अदा करके सारी बांदी ही आजाद हो जाएगी, सारी बांदी ही आजाद हो जाएगी। तवज्जो है, मुकिर इससे सही नहीं करवा सकता क्योंकि मुकिर की तो ये उम्मे वलद बन गई और उम्मे वलद से सही नहीं करवाई जा सकती, उम्मे वलद वैसे आजाद होती है भाई। तो ये बांदी मुकिर की उम्मे वलद बन गई, लेकिन मुकिर इससे खिदमत नहीं ले सकता क्योंकि मुकिर का तो क्या ख्याल है कि ये मेरे साथी की उम्मे वलद बन गई है, मेरा इसकी खिदमत में कोई हक नहीं है, तो लिहाजा मुकिर इससे खिदमत नहीं ले सकता और मुकिर इसको बेच भी नहीं सकता क्योंकि ये इसकी उम्मे वलद हो गई है। और नीज मुकिर जो है मुनकिर से जमान भी नहीं ले सकता क्योंकि मुनकिर तो इस बात का इनकार कर रहा है कि ये मेरी उम्मे वलद है। भाई सूरत भी समझ में आई या नहीं? पेचीदा सा मसला है, फिर सुनो मसला दोबारा। सूरत यह है, एक बांदी दो आदमियों में मुश्तरका है, उनमें से एक का गुमान है कि मेरे साथी ने इसको अपनी उम्मे वलद बना दिया है और वो दूसरा शरीक इस बात का इनकार कर रहा है। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि ये बांदी एक दिन मौकूफ रहेगी, किसी की खिदमत नहीं करेगी और एक दिन मुनकिर की खिदमत करेगी, और ये जो मुकिर है ये इस बांदी से खिदमत नहीं ले सकता क्योंकि वो खुद एतराफ कर रहा है कि मेरे साथी ने इसको अपने उम्मे वलद बनाया है, मालूम हुआ मेरा इसकी खिदमत में कोई हक नहीं है, तो लिहाजा मुकिर इससे खिदमत नहीं ले सकता। और नीज मुकिर जो है वो उस शरीक से जमान भी नहीं ले सकता उस मुनकिर से, क्योंकि वो तो इनकार कर रहा है उम्मे वलद बनाने का, और अलबत्ता मुकिर जो है वो इस बांदी से सही करवा सकता है। और जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि यहां जब मुकिर ने एतराफ कर लिया कि मेरे साथी ने इसे उम्मे वलद बनाया है और वो दूसरा साथी इसका इनकार कर रहा है, तो मुकिर का इकरार इसी पर पलट कर आ जाएगा और ये बांदी इसी की उम्मे वलद बन जाएगी। कहते हैं ये मसला बिल्कुल इसी तरह है जैसे एक आदमी ने दूसरे से गुलाम खरीदा और खरीदने के बाद मुश्तरी कहता है कि बाय ने बेचने से पहले ही इस गुलाम को आजाद कर दिया था और बाय तो इस बात का इनकार कर रहा है। तो फुकहा फरमाते हैं कि इस सूरत में ये जो मुकिर दावा कर रहा है बाय के एताक का, तो इसको इसी का एताक करार दे दिया जाएगा, गोया ये खुद एताक कर रहा है, इसने गुलाम को आजाद कर दिया है। तो यहां पर भी साहिबैन फरमाते हैं जब एक शरीक ने दूसरे शरीक पर दावा किया कि उसने बांदी को उम्मे वलद बनाया है और वो इसका इनकार कर रहा है, तो ये दावा इसी मुनकिर पर इसी मुकिर पर पलट कर आ जाएगा और यही बांदी इसकी उम्मे वलद बन जाएगी। जब ये इसकी उम्मे वलद बन गई तो अब मुनकिर इससे खिदमत नहीं ले सकता और नीज मुनकिर इस मुकिर से जमान भी नहीं ले सकता क्योंकि मुकिर ने यह तो नहीं कहा यह मेरी उम्मे वलद है, उसने तो कहा था यह तुम्हारी उम्मे वलद है, तो यह उसका इकरार अलबत्ता उसी पर पलट कर आ गया था। तो मुनकिर बांदी से खिदमत भी नहीं ले सकता और उस मुकिर से जमान भी नहीं ले सकता। हां, बांदी से सही करवा सकता है, बांदी सही करेगी, सिर्फ उस मुनकिर के पैसे अदा करेगी और फिर आजाद हो जाएगी। जबकि मुकिर जो है वो भी बांदी से खिदमत नहीं ले सकता, क्योंकि उसने दावा क्या किया था कि ये तो शरीक की उम्मे वलद हो गई है, तो गोया उसने खुद एतराफ कर लिया कि मेरा कोई हक नहीं है इस बांदी की खिदमत में। और नीज वो मुनकिर से जमान भी नहीं ले सकता मुकिर, क्योंकि मुनकिर तो इनकार कर रहा है उम्मे वलद बनाने का। और नीज मुकिर बांदी से सई भी नहीं करवा सकता अब, क्योंकि ये अब इसकी उम्मे वलद बन गई है और अपनी उम्मे वलद से तो सई नहीं करवाई जा सकती। तो बांदी सिर्फ मुनकिर के लिए सई करेगी, अगर वो वैसे आजाद नहीं करना चाहता, वो सही करवाना चाहता है, तो सिर्फ उसके हिस्से के अंदर सही करेगी और फिर आजाद हो जाएगी। बात समझ में आ गई अच्छी तरह? देखिए भाई, फिर ये सारा तर्जमा दोबारा देख लीजिए। कहते हैं वह इदा कानत जारिया तुम बई नरजुलैनी, जब एक बांदी दो आदमियों के दरमियान मुश्तरका थी, ज़ामा अहदुहुमा अन्नहा उम्मु वलदिन लि साहिबिही, तो गुमान किया उन दोनों में से एक ने कि ये उसके साथी की उम्मे वलद है, वह अनकरा जालिकल आखरु, और वह दूसरा शरीक इसका इनकार कर रहा है, फहिया मौकूफतुन यौम व यौमन तख्दिमुल मुनकिरा, तो एक दिन ये बांदी मौकूफ रहेगी और एक दिन मुनकिर की खिदमत करेगी, इंदा अबी हनीफा रहमतुल्लाह इमाम साहिब के नजदीक, वकाला और साहिबैन फरमाते हैं, इंशा अल मुनकिर उस्तसअल जारिया तफी निस्फ कीमतिहा, कि अगर मुनकिर चाहे तो वो बांदी से सही करवा सकता है उसकी निस्फ कीमत के अंदर, सुम्मा तकून हुर्रतन, फिर ये आजाद हो जाएगी, ला सबीला अलैहा मुकिर का, ला सबीला अलैहा मुकिर का इस बांदी पर कोई रास्ता नहीं, मुकिर का इस बांदी पर कोई रास्ता नहीं, वो इस बांदी से खिदमत भी नहीं ले सकता और वो इस बांदी से सई भी नहीं करवा सकता, क्योंकि ये इसी की उम्मे वलद बन गई है और अपनी उम्मे वलद से सई नहीं करवाई जाती, वो वैसे ही आजाद होती है भाई। लहुमा, साहिबैन की दलील यह है कि अन्नहु लम्मा लम युसद्दिकहु साहिबुहु, कि जब इस मुकिर के साथी ने उसकी तस्दीक नहीं की, तो इन कलब इकरारुल मुकिर अलैही, तो पलट आया मुकिर का इकरार उसी पर, यानी ये उसी की उम्मे वलद बन गई। तो कहते हैं इन कलब इकरारुल मुकिर अलैही, तो वो मुकिर का इकरार उसी पर पलट आया, का अन्नहुस्तौलदहा, गोया कि उसने ही इसको उम्मे वलद बनाया है, यानी ये मुकिर की उम्मे वलद बन गई। फसार कमा इदा अकर्रल मुश्तरी अलल बाई, तो ये इसी तरह हो गया जैसे कि मुश्तरी बाय के खिलाफ इकरार करे कि अन्नहु अतकल मबीअ क़ब्ल अल बाई, कि बाय ने इस मबीअ को बेचने से पहले ही आजाद कर दिया था, और वो बाय क्या कर रहा है, उसका इनकार कर रहा है, तो युजअलु का अन्नहु अतका, तो ये इसी तरह करार दिया जाएगा कि जैसे कि मुश्तरी ने ही इसको आजाद किया है, कजा हाजा, तो यहां पर भी इसी तरह है, जैसे बै के मसले में मुश्तरी का इकरार उसी पर पलट कर आ गया, तो यहां पर भी मुकिर का इकरार उसी पर पलट कर आ जाएगा। तो कहते हैं फयम तनी उल खिदमत, तो खिदमत मुमतान्या हो जाएगी, खिदमत मुमतान्या हो जाएगी। याद रखो, बाद शारहीन ने लिखा है कि इससे मुराद मुनकिर की खिदमत है, कि बांदी मुनकिर की खिदमत नहीं करेगी क्योंकि ये मुकिर की उम्मे वलद बन गई है और किसी की उम्मे वलद में दूसरे की खिदमत का कोई हक नहीं होता, तो मुनकिर की ये बांदी खिदमत नहीं करेगी। जबकि बाद शारहीन ने लिखा कि इससे खिदमत से मुराद मुकिर की खिदमत है क्योंकि मुकिर की खिदमत नहीं करेगी, क्योंकि मुकिर का क्या ख्याल है कि ये तो मेरे शरीक की उम्मे वलद है, मेरा इसकी खिदमत में कोई हक नहीं है भाई। लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि इसको मुतलक रखा जाए, जैसे साहिबे हिदाया ने जिक्र किया कि कोई भी इससे खिदमत नहीं ले सकता, ना मुकिर ना मुनकिर। मुनकिर नहीं ले सकता खिदमत क्योंकि ये मुकिर की उम्मे वलद बन गई है, और मुकिर नहीं ले सकता खिदमत क्योंकि उसका ख्याल है कि यह मुनकिर की उम्मे वलद है भाई। तो कहते हैं फयमतनी उल खिदमत, तो इस बांदी की खिदमत जो है वो मुमतने होगी, यानी उसे खिदमत नहीं ली जा सकती। व नसीब उल मुनकिर अला मिल्की ही फिल हुक्मी, और मुनकिर का हिस्सा उसी की मिल्कियत पर है, फिल हुक्मी हुक्म में, यानी हुक्म के एतबार से अभी भी मुनकिर अपने हिस्से का मालिक है इस बांदी के अंदर। तो मुनकिर खिदमत भी नहीं ले सकता, तो उसकी मालियत इस बांदी के अंदर बंद हो गई, तो वो सही करवा सकता है और सही के बाद ये बांदी आजाद हो जाएगी, सिर्फ मुनकिर का हिस्सा अदा करेगी और आजाद हो जाएगी। तो यह माना है वह नसीबुल मुनकिर आला मिल्की ही फिल हुक्मी, और हुक्म के अंदर मुनकिर का हिस्सा जो है वह उसी की मिल्कियत पर है। फयुखरज इलल इताक बिस्सियाति, तो इस बांदी को इताक की तरफ निकाला जाएगा साई के जरिए, सही के जरिए इताक की तरफ निकाला जाएगा, यानी सही करेगी, मुनकिर का हिस्सा अदा करेगी और आजाद हो जाएगी। मुकिर इसे साई नहीं करवा सकता क्योंकि मुकिर की तो यह उम्मे वलद है और उम्मे वलद से साई नहीं करवाई जा सकती। आगे देखिए भाई, क उम्मी वलदी नसरानी ये ईदा असलमत, जैसे कि ईसाई की उम्मे वलद जब वो मुसलमान हो जाए, नसरानी ईसाई को कहते हैं भाई। तो साहिबैन की दलील चल रही है, साहिबैन फरमाते हैं कि अगरचे ये बांदी मुकिर की उम्मे वलद बन गई है लेकिन मुनकिर की मालियत इसके अंदर बंद हो गई है तो ये सही करेगी, हालांकि उम्मे वलद से सही नहीं करवाई जाती लेकिन यहां पर सही करेगी और मुनकिर का हिस्सा अदा करके आजाद हो जाएगी। वो फरमाते हैं ये इसी तरह है जैसे किसी ईसाई की उम्मे वलद है और वह उम्मे वलद मुसलमान हो गई, जब वो उम्मे वलद मुसलमान हो गई तो अब उसे ईसाई के तहत नहीं रखा जा सकता भाई, ईसाई के तहत अब वो नहीं रह सकती भाई। तो वो भी बिल इत्तेफाक हमारे तीनों अइमा के नजदीक ये जो ईसाई की उम्मे वलद है जो मुसलमान हो गई है ये सही करेगी और अपनी कीमत लाकर नसरानी मालिक को अदा करेगी, उस ईसाई मालिक को अदा करेगी और आजाद हो जाएगी। तो साहिबैन फरमाते उम्मे वलद से सही नहीं करवाई जाती लेकिन जैसे जैसे ईसाई की उम्मे वलद मुसलमान हो जाए तो वो सही करके अपनी कीमत अदा करती है और आजाद हो जाती है। तो इस मसले के अंदर भी ये बांदी जो है मुकिर की उम्मे वलद बन गई है लेकिन फिर भी ये सही करेगी और मुनकिर का हिस्सा अदा करके आजाद हो जाएगी। बात समझ में आ गई। ये माना है का उम्मी वलदिन नसरानी ये इदा असलमत, जैसे कि ईसाई की उम्मे वलद जब वो मुसलमान हो जाए। वली अबी हनीफा रहमल्ला, अब इमाम साहेब की दलील आई। इधर देखिए भाई, इमाम साहेब फरमाते हैं कि मुकिर ने कहा है कि यह बांदी मेरे साथी की उम्मे वलद है, तो या तो मुकिर ने सच कहा है या झूठ कहा है। अगर इसने सच कहा है तो फिर तो इस बांदी की सारी खिदमत का हकदार मुनकिर है क्योंकि बांदी उसकी उम्मे वलद है, और अगर मुकिर ने झूठ कहा है तो फिर मुनकिर के लिए बांदी की आधी खिदमत है क्योंकि आधा हिस्सा तो मुकिर का है। तवज्जो है। तो इमाम साहब फरमाते हैं मुकिर ने जो इकरार किया है, जो एतराफ किया है, या तो उसने सच कहा है या झूठ कहा है। अगर उसने सच कहा है तो बांदी की सारी खिदमत का हकदार मुनकिर है, और अगर उसने झूठ कहा है तो बांदी की आधी खिदमत का हकदार मुनकिर है। मालूम हुआ कि मुनकिर के लिए बांदी की आधी खिदमत तो यकीनी तौर पर है जी। अगर मुकिर ने सच कहा है तो बांदी की सारी खिदमत का हकदार मुनकिर है, और सारी खिदमत के अंदर निसब खिदमत भी आ गई जी। और अगर मुकिर ने झूठ कहा है तो फिर मुनकिर के लिए बांदी की आधी खिदमत है। तो मालूम हुआ चाहे मुकिर ने सच कहा है या झूठ कहा है, आधी खिदमत तो कम अज कम यकीनी तौर पर मुनकिर के लिए साबित है। तो जो यकीनी तौर पर खिदमत साबित थी हमने उसको ले लिया कि मुनकिर के लिए बांदी की आधी खिदमत होगी, यानी एक दिन उसकी खिदमत करेगी और एक दिन बांदी मौकूफ रहेगी भाई। तो कहते हैं वली अबी हनीफा रहिमहुल्लाह ताला, और इमाम साहेब की दलील यह है कि अन्नल मुकिर लौ सदका, कि मुकिर जो है उसने अगर सच कहा है तो कानतिल खिदमतु कुल्लुहा लिल मुनकिरी, तो इस बांदी की सारी खिदमत जो है वो मुनकिर के लिए है। वलौ कदब कान लहु निसफुल खिदमती, और अगर मुकिर ने झूठ कहा है तो मुनकिर के लिए बांदी की निसफ खिदमत होगी। तो मालूम है निसफ खिदमत तो यकीनी तौर पर मुनकिर के लिए है और बाकी निसफ में शक है, बाकी निसफ में शक है कि मालूम नहीं सच है या झूठ। अगर सच है तो बाकी निसफ भी उसी के लिए, और अगर सच नहीं है तो बाकी निसफ उसके लिए नहीं है भाई। तो कहते हैं फयसबूतु माहुवल मुतयक्कनु बिही, तो साबित हो जाएगी वो खिदमत जो यकीनी है, वह हुआ निसफ, और वो निसफ खिदमत है भाई। वला खिदमत अली शरी की शाहिदी वलस्ते सा, हां अलबत्ता ये मुकिर इस बांदी से खिदमत नहीं ले सकता, और ये मुकिर जो है ये इस बांदी से साई भी नहीं करवा सकता। वजह यह कि मुकिर ने खुद इकरार कर लिया है कि यह मेरे शरीकियों में वलद है, तो खुद उसने इकरार कर लिया कि इस बांदी की खिदमत में मेरा कोई हक नहीं है, तो लिहाजा यह उस बांदी से खिदमत नहीं ले सकता यह मुकिर, और नीज बांदी से सही भी नहीं करवा सकता। क्यों नहीं सही करवा सकता? क्योंकि मुकिर ने क्या एतराफ किया है कि यह मेरे शरीक की उम्मे वलद है। जब शरीक की उम्मे वलद हो गई तो शरीक सारी बांदी का मालिक बन गया, और जब सारी बांदी का मालिक हुआ तो तमल्लुक पाया गया, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? शरीक को जमान देना पड़ेगा, और यह जमाने तमल्लुक है, यह तंगदस्ती और मालदारी से बदलता नहीं, यह हर हाल में उस मुनकिर को देना पड़ेगा। लेकिन मुनकिर तो इसका इंकार कर रहा है, लिहाजा उसे जमान भी नहीं लिया जा सकता। तवज्जो है, मुकिर ने इकरार किया है कि ये बांदी मुनकिर की उम्मे वलद है। इसका मतलब है मुकिर खुद इकरार कर रहा है, मैं इस बांदी से सही नहीं करवा सकता, मैं सिर्फ मुनकिर से जमान ले सकता हूं क्योंकि वो मेरे हिस्से का भी मालिक बन गया है, वो मेरे हिस्से का भी मालिक बन गया है। तो ये सिर्फ जमान का दावा कर रहा है, और वो दावा भी साबित नहीं होगा क्योंकि दूसरा आदमी तो इसका इनकार कर रहा है। तो मालूम हुआ मुकिर खुद एतराफ कर रहा है कि मैं बांदी से खिदमत भी नहीं ले सकता और मैं बांदी से सही भी नहीं करवा सकता। तो कहते हैं वला खिदमत अली शरीक की शाहिदी, और कोई खिदमत नहीं है उस शरीक के लिए, अशाहिदी जो गवाही देने वाला है, यानी वो जो इकरार करने वाला है। तो कहते हैं वला खिदमत अली शरीक की शाहिदी वलस्ते सा, और वो शरीक जो गवाही देने वाला है उसके लिए ना तो इस बांदी की खिदमत है और ना उसके लिए इस बांदी की साई है। लिअन्नहु यतबर्रअ अन जमीअ ज़ालिका बिदावल इस्तिलादि वज़्ज़मानी, इसलिए क्योंकि वो बांदी को बरी कर रहा है इस सब से, बिदावल इस्तिलादि वज़्ज़मानी, उम्मे वलद और जमान के दावे के जरिए। मुकिर ने क्या इकरार किया कि मेरे साथी की ये उम्मे वलद है, तो उम्मे वलद है मालूम हो, ये उसे खिदमत भी नहीं ले सकता और उस पर जमान का दावा कर रहा है भाई, तो ये बांदी से खिदमत भी नहीं ले सकता और सही भी नहीं करवा सकता। तो कहते हैं लिअन्नहु यतबर्रअ अन जमीअ ज़ालिका बिदावल इस्तिलादि वज़्ज़मानी, इसलिए क्योंकि वो बांदी को इस सब से बरी कर रहा है, बिदावल इस्तिलादि वज़्ज़मानी, उम्मे वलद बनाने और जमान के दावे के जरिए। वल इकरार भी उमूमियत वलदियत जम्मनुल इकरार बिन नसब, यहां से जवाब दे रहे हैं साहिबैन के कियास का। साहिबैन ने इस मसले को कियास किया था वो बाय और मुश्तरी के मसले पर, कि वहां पर मुश्तरी एतराफ कर रहा है कि बाय ने बै से पहले ही इस गुलाम को आजाद कर दिया था, और बाय इसका इनकार करता है तो मुश्तरी पर उसका एतराफ पलट कर आ जाएगा और यूं समझा जाएगा मुश्तरी इस गुलाम को आजाद कर रहा है, तो वो मुश्तरी की तरफ से आजाद हो जाएगा जी। तो यहां पर भी साहिबैन फरमाते हैं कि यहां एक शरीक दावा कर रहा है कि दूसरे ने इस बांदी को उम्मे वलद बना दिया है और दूसरा शरीक इनकार कर रहा है, तो इस मुकिर का इकरार इसी पर पलट कर आ जाएगा और ये इसकी उम्मे वलद बन जाएगी। इमाम साहब फरमाते हैं नहीं, आप इस उम्मे वलद के मसले को बैअ के मसले पर कयास नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में फर्क है। वजह यह है कि उम्मे वलद जो है उसके साथ नसब भी साबित हो जाता है। जब एक बांदी एक आदमी की उम्मे वलद है, मालूम हुआ उस बांदी के बच्चे का नसब इस मालिक से साबित है। तो लिहाजा जब मुकिर ने करार कर लिया कि यह बांदी मेरे शरीक की उम्मे वलद है, तो गोया मुकिर ने यह भी एतराफ कर लिया कि इस बांदी का जो बच्चा है उसका नसब मेरे शरीक से साबित है, यानी वो मेरा बच्चा नहीं है, वो मेरे शरीक का बच्चा है। तो जब एक दफा इसने खुद एतराफ कर लिया कि ये उस शरीक का बच्चा है, तो बाद में ये एतराफ इसी मुकिर की तरफ पलट जाए और ये बच्चा मुकिर का साबित हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। नसब लाजिम होता है, नसब को रद्द करने से भी रद्द नहीं होता। जब मुकिर ने खुद कह दिया कि ये मेरे शरीक की उम्मे वलद है, तो गोया मुकिर ने एतराफ कर लिया कि इस बांदी का जो बच्चा है उसका नसब किससे साबित है, मेरे शरीक से। जब उसने उस बच्चे को गैर का बच्चा करार दे दिया, तो बाद में अब इस बच्चे को इस मुकिर के लिए साबित नहीं किया जा सकता क्योंकि नसब जो है वो रद्द करने से भी रद्द नहीं होता। तो यहां पर मुकिर पर उसका इकरार पलट नहीं सकता क्योंकि उम्मे वलद का मामला है और उम्मे वलद होने के साथ नसब लाजिम है और वो नसब बदल नहीं सकता। जब मुकिर ने एक दफा कह दिया ये मेरा बच्चा नहीं है तो अब बाद में ये बच्चा अब इसके लिए साबित नहीं हो सकता क्योंकि इकरार भी नसब लाजिम होता है, वो रद्द करने से भी रद्द नहीं होता। तो लिहाजा एक आदमी जब एक बच्चे के नसब का इकरार कर ले किसी दूसरे के लिए तो गोया उसने कह दिया ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं, लिहाजा वो इसका बच्चा साबित भी नहीं हो सकता। तो उम्मे वलद बनाने के साथ बच्चे का नसब लाजिम है और बच्चे के नसब तो रद्द नहीं हो सकता तो उम्मे वलद भी इस मुकिर की तरफ पलट नहीं सकती, वो इसकी उम्मे वलद नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वली करारू भी उमूमियतिल वलदी यतजम्मनुल इकरार बिन नसबी, और उम्मे वलद होने का इकरार ये मुतजम्मिन है इकरार बिन नसब को, यानी उम्मे वलद होने के इकरार के जिमन में इकरार बिन नसब भी होता है। जब मुकिर ने यह कहा यह बांदी मेरे शरीक की उम्मे वलद है, मालूम हुआ इसने यह भी इकरार कर लिया कि इसके बच्चे का नसब मेरे शरीक से साबित है। तो कहते हैं वल इकरारु बि उमूमियतिल वलदी यतजम्मनुल इकरार बिन नसबी, और उम्मे वलद होने का जो इकरार है वो इकरार बिन नसब को मुतजमिन है, यानी उसके जिमन में नसब का इकरार भी आ जाता है। वहादा अमरुन लाजिमुन, और ये जो इकरार बिन नसब है ये एक अमरे लाजिम है, ये एक अमरे लाजिम है, यानी ये चीज लाजिम हो जाती है। वला यरतद्दु बिर्रद्दी, और ये रद्द नहीं होती रद्द करने से, रद्द करने से भी ये रद्द नहीं होती। फला युमकिनु अन युजअल अल मुकिरु कल मुस्तौलिदी, लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि मुकिर को करार दे दिया जाए कल मुस्तौलिदी, उम्मे वलद बनाने वाले की तरह। इस मुकिर को उम्मे वलद बनाने वाला करार दे दिया जाए ये यहां मुमकिन नहीं है भाई, क्योंकि वो इसने बच्चे के नसब का इनकार कर दिया है तो अब उस बच्चे का नसब इस मुकिर के लिए साबित नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। आगे देखिए भाई, वह इन कानत उम्म वलदिम बई न हुमा फातकहा अहद हुमा वह मूसिरुन फला जमाना अलैहि इंद अबी हनीफत रहिमहुल्लाह वकाला यजमनु निस्फ कीमतिहा। भाई सूरत मसला ये कि एक बांदी है और वो दो आदमियों की मुश्तरका उम्मे वलद है, एक बांदी है और वो दो आदमियों की मुश्तरका उम्मे वलद है। आप हैरान होंगे कि एक ही बांदी दो आदमियों की उम्मे वलद कैसे हो सकती है, तो सूरत उसकी ये है कि एक बांदी दो आदमियों के दरमियान मुश्तरका थी और फिर इस बांदी ने एक बच्चे को जन्म दिया तो दोनों शरीकों ने इकट्ठा दावा कर दिया कि ये मेरा बच्चा है। तो अब यहां तरजीह की कोई सूरत नहीं है। अगर एक का दावा पहले होता तो ये बांदी उसकी उम्मे वलद हो जाती, लेकिन यहां दोनों ने बिल्कुल इकट्ठे दावा किया है तो तरजीह की कोई सूरत नहीं है, तो ये बांदी दोनों की उम्मे वलद शुमार होगी और ये बच्चा दोनों का बच्चा शुमार होगा। भाई भाई हकीकत में तो एक का बच्चा है लेकिन यहां तरजीह की कोई सूरत नहीं, लिहाजा दोनों से इस बच्चे का नसब साबित हो जाएगा, तो ये दोनों की मुश्तरका उम्मे वलद हो गई। या दोनों ने इकट्ठा दावा नहीं किया लेकिन दोनों ने अलग अलग मजलिसों में दावा किया, एक ने एक मजलिस में दावा किया ये मेरा बच्चा है और दूसरे ने किसी दूसरी मजलिस में उसको खबर मिली तो उसने कहा ये मेरा बच्चा है। अब यहां पता नहीं चल सकता कि किसने पहले दावा किया है, तो लिहाजा दोनों को इकट्ठा ही करार दिया जाएगा और ये दोनों की उम्मे वलद हो जाएगी। तो ये बांदी जो दो आदमियों की उम्मे वलद है, इन दोनों आदमियों में से एक ने अपने हिस्से को आजाद कर दिया, तो याद रखो पूरी बांदी आजाद हो जाएगी और इमाम साहब के नजदीक वो जो दूसरा शरीक है वो मुअतिक से जमान नहीं ले सकता, जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि दूसरा शरीक मुअतिक से जमान ले सकता है अगर वो मालदार है। भाई अगर वो मालदार है तो उसे जमान ले सकता है। वजह यह कि साहिबैन और इमाम साहिब का इख्तिलाफ है, इमाम साहिब के नजदीक उम्मे वलद जो है उसकी कोई कीमत नहीं, وہ متقویم نہیں ہے، یہ متقویم نہیں ہے یعنی قیمت والی نہیں ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک ام ولد متقویم ہے یعنی قیمت والی ہے، تو لہذا دوسرا شریک جو ہے معتق سے زمان لے سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی کہتے ہیں وہ ان کانت ام ولد بینہما، اور اگر ایک ام ولد دو آدمیوں کے درمیان مشترکہ تھی، فاعتقها احدهما وهو موسر، تو ان دونوں میں سے ایک نے اس کو آزاد کر دیا اس حال میں کہ وہ مالدار ہے، فلا زمان علیہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو اس معتق پر کوئی زمان نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک، کیونکہ ام ولد کی کوئی قیمت نہیں ہے. وقالا، اور صاحبین فرماتے ہیں، یزمن نصف قیمتها، کہ جو معتق ہے یہ ضامن ہوگا اس ام ولد کی نصف قیمت کا، لأن مالیت ام الولد غیر متقومۃ عندہ، اس لیے کیونکہ ام ولد کی مالیت جو ہے وہ غیر متقوم ہے، عندہ امام صاحب کے نزدیک، ام ولد کی مالیت غیر متقوم ہے یعنی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، عندہ امام صاحب کے نزدیک، وہ متقومۃ عندہما، جبکہ صاحبین کے نزدیک ام ولد کی مالیت متقوم ہے، ام ولد قیمت والی ہے، اس کی قیمت ہے بھائی. وعلی ھذا الاصل تبتنی عدۃ من المسائل، اور اس ضابطے پر کئی مسائل کی بنیاد ہے، اس ضابطے پر کئی مسائل کی بنیاد ہے، اوردناها فی کفایت المنتہی، جن کو ہم لے کر آئے ہیں کفایت المنتہی میں. میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی کہ صاحب ہدایہ نے اس متن کی جو پہلی شرح لکھی اس کا نام کفایت المنتہی تھا، اور وہ 80 جلدوں پر مشتمل تھی، لیکن چونکہ وہ بہت طویل ہو گئی تھی تو پھر صاحب ہدایہ نے اس کو مختصر کیا، اور ان 80 جلدوں کا خلاصہ 4 جلدوں کی صورت میں لکھا اور اس کا نام ہدایہ رکھا. تو کفایت المنتہی وہ جو صاحب ہدایہ کی طویل شرح تھی اسی متن کی بھائی. اور علماء فرماتے ہیں کہ کفایت المنتہی آج دنیا میں موجود نہیں ہے، جو تاریخ کے اندر بڑے بڑے فتنے آئے اور حوادثات زمانہ کی وجہ سے وہ کفایت المنتہی ختم ہو گئی ہے، آج دنیا میں وہ موجود نہیں ہے. البتہ وہ مسائل جن کی طرف صاحب ہدایہ اشارہ فرما رہے ہیں وہ اور کتابوں کے اندر علماء نے درج فرمائے ہیں. تو صاحب ہدایہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وعلی ھذا الاصل تبتنی عدۃ من المسائل اوردناها فی کفایت المنتہی، کہ اس ضابطے پر کئی مسائل کی بنیاد ہے جن کو ہم نے کفایت المنتہی میں ذکر کیا ہے، ان میں سے بعض مسائل حاشیے کے اندر بھی دیے ہوئے ہیں. حاشیے کے اندر بھائی کہتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ باندی دونوں شریکوں کی ام ولد ہے، تو اگر دونوں میں سے ایک کا انتقال ہوگا تو یہ آزاد ہو جائے گی، تو کیا دوسرے شریک کے لیے یہ سعی کرے گی یا سعی نہیں کرے گی؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، یہ دوسرے شریک کے لیے بھی سعی نہیں کرے گی، ویسے ہی آزاد ہو جائے گی کیونکہ ام ولد متقوم نہیں ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک ام ولد متقوم ہے، لہذا ان کے نزدیک یہ ام ولد دوسرے شریک کے لیے سعی کرے گی اور اس کے حصے کی قیمت لا کر اسے ادا کرے گی. اسی ضابطے پر ایک یہ مسئلہ بھی متفرع ہوتا ہے کہ اگر اسی ام ولد نے بعد میں ایک اور بچے کو جنم دیا اور پھر ان دونوں میں سے ایک نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے، تو اس بچے کا نسب اسی سے ثابت ہو جائے گا اور یہ بچہ آزاد ہوگا، لیکن یہ جو مدعی تھا یہ اپنے شریک کے لیے اس بچے کی نصف قیمت کا ضامن نہیں بنے گا. بھائی بھائی دیکھیے نا، ام ولد مشترکہ ہے، دونوں کی ملکیت ہے اس کے اندر، تو جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی ماں کے حکم میں ہوتا ہے، تو معلوم ہو اس بچے کے اندر بھی دونوں کی ملکیت ہونی چاہیے. جب دونوں کی ملکیت ہونی چاہیے لیکن ایک نے جب دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے تو یہ بچہ آزاد ہو جائے گا، تو دوسرے کی آدھی ملکیت اس میں ضائع ہو گئی بھائی. تو کیا وہ دوسرا شریک اس مدعی سے زمان لے سکتا ہے یا زمان نہیں لے سکتا؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، بچے کا وہی حکم ہے جو ماں کا حکم ہے، اور ماں جو ہے وہ ام ولد ہے، غیر متقوم ہے، تو بچہ بھی غیر متقوم ہے، لہذا اس کی کوئی قیمت نہیں کہ جس کا زمان ادا کیا جائے. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ ام ولد متقوم ہے تو اس کا بچہ بھی इसी के हुक्म में मुतकविम है, लिहाजा यह मुद्दाई जो है वह इस बच्चे की निस्फ कीमत जो है दूसरे शरीक के हवाले करेगा भाई, उसको अदा करेगा भाई। इसी तरह इसी जाब्ते पर यह मसला भी मुतफर होता है कि अगर उम्मे वलद को किसी ने गसब कर लिया और फिर यह उम्मे वलद उसके पास हलाक हो गई, तो इमाम साहब फरमाते हैं कि गासिब पर कोई जमान नहीं क्योंकि उम्मे वलद मुतकविम नहीं है, जबकि साहिबैन के नजदीक गासिब से जमान लिया जाएगा क्योंकि उम्मे वलद साहिबैन के नजदीक मुतकविम है। बात समझ में आ गई। तो ये वो चंद मसाइल हैं जिनकी तरफ साहिब हिदाया ने इशारा फरमाया। तो कहते हैं वाला हादल असली तब तनी इद्दतुम मिनल मसाइली, और इस जाब्ते पर कई मसाइल की बुनियाद है, औरद ना हाफी किफायतिल मुंतही, जिनको हम किफायतुल मुंतही में लाए हैं, यानी उन मसाइल को हमने किफायतुल मुंतही में जिक्र किया है। आगे देखिए वजह कौली हिमा, अब साहिबैन के कौल की वजह आ गई। साहिबैन क्या फरमाते हैं कि उम्मे वलद मुतकविम है भाई। तो कहते हैं वजह कौली हिमा, साहिबैन के कौल की वजह यह है कि अन्नहा मुंतफा बिहा वत व इजारत वस्तखदामा। भाई साहिबैन फरमाते हैं कि ये जो उम्मे वलद है ये मुतकविम है, इसलिए क्योंकि उम्मे वलद से फायदा उठाया जाता है। आका जो है उम्मे वलद से सोहबत भी कर सकता है और उससे खिदमत भी ले सकता है और किसी दूसरे को भी उजरत के अंदर खिदमत के लिए दे सकता है, और ये चीजें अलामत हैं इसके मुतकविम होने की। उम्मे वलद से आका वती भी कर सकता है, सोहबत भी कर सकता है, उसे खिदमत भी ले सकता है और उसे इजारे पर भी दे सकता है, यानी उजरत पर कि किसी दूसरे की खिदमत करे और आका उसकी उजरत वसूल करे भाई। और याद रखना यहां वती का जिक्र आया, मैंने आपको बतलाया था कि जब एक बांदी दो आदमियों के दरमियान मुश्तरका हो तो किसी एक के लिए भी उससे सोहबत जायज नहीं है भाई। तो यहां पर दलील के अंदर आया कि साहिबैन की कौल की वजह यह है कि उम्मे वलद से फायदा उठाया जाता है वती के एतबार से भी, तो यह इस उम्मे वलद की बात नहीं हो रही, मुतलकन आम उम्मे वलद जो किसी एक आदमी की होती है तो उससे फायदा उठाया जाता है वती का भी, खिदमत का भी और इजारे का भी, और यह दलील है इसके मुतकविम होने की। तो कहते हैं वजह कौलिहिमा, साहिबैन के कौल की वजह यह है कि अन्नहा मुंतफाउन बिहा, कि ये जो उम्मे वलद होती है इसे नफा उठाया जाता है, वत अं व इजारतं वस्तखदामन, वती के एतबार से भी और इजारे के एतबार से भी और खिदमत लेने के एतबार से भी, वहादा हुआ दलालतु तकव्वुमी, और ये इसके मुतकविम होने की दलील है, व बिम्तिनाइ बैइहा ला यस्कुतु तकव्वुमुहा, और इसकी बै के मुमतने होने से इसका तकव्वुम साकित नहीं होता। भाई मैंने आपको बतलाया था कि मुदब्बर उम्मे वलद और मुकातब इनको बेचा नहीं जा सकता क्योंकि इनका हक आजादी जाया होगा भाई। तो साहिबैन की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं कि उम्मे वलद जो है वो मुतकविम है, सिर्फ उसका बेचना जायज नहीं है, लेकिन बेचना मुमतने हो इससे उसका तकव्वुम साकित नहीं होता, उसका मुतकविम होना खत्म नहीं होता। कहते हैं इसी तरह है जैसे मुदब्बर है, और मुदब्बर तो बिल इत्तेफाक हमारे तीनों अइमा के नजदीक मुदब्बर मुतकविम है। तो साहिबैन फरमाते हैं कि मुदब्बर जो है उसको भी बेचना मना है, लेकिन इसके बावजूद इमाम साहिब के नजदीक वो मुतकविम है। तो जैसे मुदब्बर में बेचना मना है फिर भी वो मुतकविम है, इसी तरह अगर उम्मे वलद का बेचना मना है तो इससे कोई खराबी लाजिम नहीं आती, ये उम्मे वलद भी मुतकविम है भाई। तो कहते हैं वह बिम्तिनाई बैइहा ला यस्कुतु तकव्वुमुहा, और इस उम्मे वलद की बै के मुमतने होने से इसका कीमत वाला होना साकित नहीं होता, कमा फिल मुदब्बरी, जैसे कि मुदब्बर में है, अला तारा क्या आप देखते नहीं, अन्न उम्म वलदिन नसरानी इदा असलमत अलैहा सिआया। तो साहिबैन ने इस उम्मे वलद को कियास किया मुदब्बर पर, और अब इस उम्मे वलद को कियास कर रहे हैं नसरानी यानी ईसाई की उम्मे वलद पर जो मुसलमान हो जाए। एक ईसाई है उसकी उम्मे वलद है और वो उम्मे वलद मुसलमान हो गई। तो अभी आपने मसला पढ़ा कि ये उम्मे वलद अब ईसाई के तहत नहीं रह सकती, लिहाजा ये जाएगी सही करेगी और अपनी कीमत अदा करके आजाद हो जाएगी। तो साहिबैन फरमाते हैं देखा इस मसले के अंदर ये जो ईसाई की उम्मे वलद है ये वैसे ही आजाद नहीं हो रही बल्कि सही कर अपनी कीमत अदा कर रही है। मालूम हुआ उम्मे वलद मुतकविम है, इसीलिए तो इस पर सही को वाजिब करार दिया गया। अगर ये मुतकविम ना होती तो इसके जिम्मे सही भी ना होती। भाई तो कहते हैं अल्लाह तारा, क्या आप देखते नहीं है अन्न उम्मा वलद इन नसरानी के ईसाई की उम्मे वलद इदा असलमत जब वो मुसलमान हो जाए अलैहस सियायतु तो उस उम्मे वलद पर सही वाजिब होती है। वहां दा आयतु तकवुमी और ये इसके कीमत वाला होने की अलामत है। गैर अन्न कीमत हा सुलुसु कीमती हा किन्नतन अलामा कालू। भाई याद रखो ये जो उम्मे वलद है इसकी कीमत आम बांदी से कम होती है। उम्मे वलद की कीमत आम बांदी का सिर्फ एक तिहाई होती है। उम्मे वलद की कीमत आम बांदी का सिर्फ एक तिहाई होती है यानी तीन में से सिर्फ एक हिस्सा। अगर यही आम बांदी होती और इसकी कीमत 300 दिरहम थी तो अब जब ये उम्मे वलद बन गई है तो अब सिर्फ इसकी कीमत 100 दिरहम है भाई, यानी तीन हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा इसकी कीमत है, एक तिहाई इसकी कीमत है। तो उम्मे वलद की कीमत आम बांदी के मुकाबले में एक तिहाई होती है। जबकि आप पढ़ चुके हैं गुज़श्ता सबक में कि मुदब्बर जो है उसकी कीमत भी आम गुलाम के मुकाबले में कम होती है, लेकिन मुदब्बर की कीमत आम गुलाम के मुकाबले में दो तिहाई होती है, यानी तीन में से दो हिस्से। अगर आम गुलाम 300 दिरहम का है तो वही गुलाम जब मुदब्बर बन गया तो अब 200 दिरहम का है भाई, और आम बांदी अगर 300 दिरहम की है तो अगर वही बांदी उम्मे वलद बन गई तो अब वो सिर्फ 100 दिरहम की है। बात समझ में आ गई। तो अब इसी को साहिबे हिदाया जिक्र फरमाएंगे। कहते हैं गैर अन्न कीमत हा सुलुसु कीमती हा किन्नतन, मगर यह कि उम्मे वलद की जो कीमत है वो इसकी कीमत का तिहाई है। किन्नतन बैतबार आम बांदी होने के, आम बांदी होने के एतबार से जो इसकी कीमत थी उसका सिर्फ सुलुस है इस उम्मे वलद की कीमत। तो कहते हैं गैर अन्न कीमत हा सुलुसु कीमती हा किन्नतन, इलावा इसके कि इस उम्मे वलद की जो कीमत है वो आम बांदी होने के एतबार से इसकी कीमत का तिहाई है। आम बांदी होने के एतबार से जो इसकी कीमत थी उसका तीसरा हिस्सा है ये उम्मे वलद की कीमत। भाई अलामा कालू, उस वजह से जो फुकहा ने फरमाया है भाई, लिफवाती मनफियातिल बैई व सियायती बादल मौती। अब वजह जिक्र कर रहे हैं साहिबे हिदाया, तवज्जो से भाई, उम्मे वलद की कीमत आम बांदी की कीमत का तीसरा हिस्सा है, इसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह जिक्र फरमा रहे हैं कि आम बांदी जो है, आम बांदी के तीन फायदे हैं कि उससे खिदमत भी ली जा सकती है, उसको बेचा भी जा सकता है और मौत के बाद उससे सई भी करवाई जा सकती है। उससे मौत के बाद सई भी करवाई जा सकती है। मसलन एक आदमी ने वसीयत कर दी कि मेरे मरने के बाद यह बांदी आजाद है, मरने के बाद बांदी आजाद है, तो यह बांदी मुदब्बरा हो गई और आका के मरने पर यह आजाद होगी, लेकिन आका का माल सिर्फ यही बांदी थी और कुछ भी नहीं है जी। तो इस बांदी का हुक्म वसीयत वाला है, तो इस बांदी का सिर्फ तीसरा हिस्सा आजाद होगा और बाकी दो हिस्सों में यह सही करेगी और वो पैसे कमा कर लाएगी और वारिसों को देगी भाई। तो आम बांदी से मौत के बाद सही करवाई जा सकती है, लेकिन याद रखो उम्मे वलद जो है वो वैसे ही आजाद होती है, उससे सही नहीं करवाई जा सकती। एक आदमी की उम्मे वलद है और उस आदमी का इंतकाल हुआ, अब इस उम्मे वलद ने आजाद होना है, इस आदमी का और कोई माल है ही नहीं, सिर्फ ये उम्मे वलद है, तो क्या सिर्फ इसका सुलुस आजाद होगा और दो सुलुस में ये वारिसों के लिए सही करेगी? कहते हैं नहीं नहीं, ये जो उम्मे वलद होती है ये मौत के बाद सही नहीं करती, ये वैसे ही आजाद हो जाती है जी। तो आम बांदी के कितने फायदे? तीन, उसे खिदमत भी ली जा सकती है, उसे बेचा भी जा सकता है और मौत के बाद उसे सही भी करवाई जा सकती है। लेकिन जब उम्मे वलद बन गई अब सिर्फ खिदमत ली जा सकती है और दो फायदे खत्म हो गए, इसको बेचा भी नहीं जा सकता और मौत के बाद सही भी नहीं करवाई जा सकती। तो उम्मे वलद के तीन में से दो फायदे खत्म हो गए, सिर्फ एक फायदा बाकी है, लिहाजा इसकी कीमत में तीन में से दो हिस्से खत्म हो गए और सिर्फ एक हिस्सा कीमत रह गई भाई जी। तो कहते हैं लिफावाति मनफातिल बैई वसी आयति बादल मौती, इस वजह से कि ये जो उम्मे वलद है इसकी बैअ का नफा और इसी तरह मौत के बाद इसकी जो सई है ये दोनों चीजें फौत हो गईं। तो तीन फायदों में से दो फायदे फौत हो गए, सिर्फ खिदमत बाकी रह गई, तो इसकी कीमत भी तीन में से दो हिस्से साकित हो जाएगी। बिखिलाफ इल मुदब्बरी, भाई मुदब्बर के बारे में आपने पढ़ा था, मुदब्बर की कीमत दो तिहाई रह जाती है, मुदब्बर की कीमत दो तिहाई रह जाती है। अब उसकी वजह जिक्र करेंगे साहिब हिदायत, कहते हैं क्योंकि मुदब्बर के भी तीन फायदे थे, एक तो यह कि उससे खिदमत ली जा सकती है, दूसरा उसको बेचा जा सकता है, और नीज मौत के बाद उससे सई भी करवाई जा सकती है। तो जब इस गुलाम को मुदब्बर बना दिया तो अब इसको बेचा नहीं जा सकता, एक नफा खत्म हो गया, लेकिन खिदमत भी ली जा सकती है और मौत के बाद सई भी करवाई जा सकती है, तो दो नफे अभी भी बाकी हैं। तो इसलिए इसके तीन में से दो हिस्से कीमत बाकी है भाई, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं बेखिलाफ इल मुदब्बरी, बखिलाफ मुदब्बर के, लिअन अल फाइता मनफातुल बैई, इसलिए क्योंकि मुदब्बर के अंदर सिर्फ बैअ का नफा फौत हुआ है। अम्मा से आयतु वल इस्तेखदाम फबाकियानी, और बाकी मौत के बाद सई जो है और खिदमत लेना जो है, फबाकियानी, ये दोनों नफे बाकी हैं, लिहाजा इसलिए मुदब्बर की कीमत तीन में से दो तिहाई रह जाती है आम गुलाम के मुकाबले में। अब इमाम साहेब की दलील आ गई, वली अबी हनीफा रहिमहुल्ला, और इमाम साहेब की दलील यह है कि अन्न तकव्वुम बिल इहराज वही मुहरजतुन लिन्नसब ला लित्तकव्वुम वल इहराज लित्तकव्वुम ताबिउन। इमाम साहेब की दलील आ गई, इमाम साहब फरमाते हैं कि किसी चीज का मुतकव्विम होना इहराज के जरिए होता है। अहरजा युहरिजु, इहराज का माना है जमा करना और समेटना, जमा करना और समेटना। तो कोई चीज एहराज के जरिए कीमत वाली बनती है भाई। देखो ये जो माल है ना, माल, माल को माल इसलिए कहते हैं क्योंकि तबीयत इसकी तरह माइल होती है, और जो चीज कीमत वाली होती है लोग उसको समेटते हैं, अपने पास महफूज रखते हैं। देखो माल को लोग क्या करते हैं, अपने पास हिफाजत से रखते हैं। हर चीज, जो भी आप चीज कीमत पैसे देकर लाते हैं, आप उसका ख्याल रखते हैं। तो याद रखो ये जो कीमत आती है ये एहराज के जरिए आती है। मसलन एक आम जंगल है, किसी का ममलूक नहीं है, तो उसके अंदर जो लकड़ियां वगैरह हैं वो मुतकव्विम नहीं है, जो भी जाए वहां से लकड़ियां इकट्ठी कर सकता है। जंगल में लकड़ियां, एक साथी आया, आपने कहा भाई ये जंगल में लकड़ियां मैंने आपको एक लाख रुपए में बेच दी। भाई ये तो आम लोगों का जंगल है, आप कैसे बेच रहे हैं? हां, वही लकड़ियां आप समेट कर ले आए और गट्ठा बनाया, अब आप बाजार में बेचते हैं। अब देखो आपने उनको क्या कर लिया, अपने पास महफूज कर लिया, जमा कर लिया, अब ये कीमत वाली हो गई, आप बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। तो मालूम है कीमत किसके जरिए होती है, एहराज के जरिए होती है, समेटने और जमा करने से। इसी तरह गुलाम है, गुलाम कैसे बनाया जाता है, गुलाम तो जंग हुई थी, जंग के अंदर मुखालिफों का आदमी हमने पकड़ लिया था, तो वहां उसको हमने पकड़ने के बाद अपने पास महफूज कर लिया कि अब हमारी क्या करेगा, खिदमत करेगा, तो माल बन गया। देखा एहराज के जरिए कीमत होती है, वरना पहले तो वो आजाद था, उसकी कोई कीमत नहीं थी भाई। तो मालूम कीमत किसके जरिए होती है, एहराज के जरिए होती है। इसी तरह दरिया के अंदर मछलियां हैं, तो वो आप किसी साथी से कहते हैं ये मछलियां मैंने आपको बेच दी इतने पैसों में, भाई आप तो इसके मालिक ही नहीं है भाई, ये तो मुतकवी में नहीं है क्योंकि इनमें एहराज नहीं है। तो हां, अलबत्ता जब आप इन मछलियों को पकड़ लेते हैं तो अब इनका जमा करना और महफूज करना पाया गया, अब ये मुतकवी हो गई, अब आप बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। मालूम हुआ कीमत वाला होना ये एहराज के जरिए होता है। और फिर ये एहराज याद रखना दो किस्म पर है, एक एहराज होता है तकव्वुम के लिए और एक एहराज होता है नसब के लिए। एक चीज को महफूज किया जाता है कीमत वाला होने की वजह से और एक चीज को महफूज किया जाता है नसब की वजह से। मसलन मनकूहा जो है, अपनी बीवी जो है, इंसान उसकी भी हिफाजत करता है, लेकिन यहां एहराज जो है वो कीमत वाला होने की वजह से नहीं है, क्योंकि ये तो आजाद औरत है, आजाद औरत तो माले मुतकविम नहीं है भाई। तो लिहाजा यहां एहराज जो है वो नसब की वजह से है। तो इस मनकूहा बीवी के अंदर एहराज लिन नसब है। एहराज लिन नसब का क्या माना? एहराज लिन नसब का माना यह है कि इस औरत की इसलिए हिफाजत की जा रही है कि हिफाजत करने वाला शख्स यानी उसका खावंद यह सोचता है कि इस औरत से मुझे औलाद हासिल होगी, इसके जरिए मेरे नसब का सिलसिला चलेगा। तो यह जो हिफाजत की जा रही है यह किस लिए है? नसब के लिए है भाई। तो यह है एहराज लि नसब। और जबकि दूसरा एहराज लि तकव्वुम है कि उसके अंदर इंसान किसी चीज को महफूज करता है उसकी कीमत होने की वजह से, मालदारी के लिए। देखें आप अपनी तमाम चीजों की हिफाजत करते हैं, किस लिए? क्योंकि वो कीमत वाली हैं। तो मालदार होने के लिए इंसान अपनी चीजों की हिफाजत करता है। जितनी ज्यादा कीमत वाली चीजें आपके पास होंगी आप उतने ही ज्यादा मालदार शुमार होंगे भाई। तो बास चीजों में एहराज नसब के लिए होता है और बास में एहराज तकव्वुम के लिए। और एहराज नसब या तो बीवी के अंदर है और इसी तरह उम्मे वलद के अंदर जो एहराज है वो भी नसब के लिए है कि उससे उस आका की एक औलाद हो चुकी है। तो अब आका जो इसकी हिफाजत करता है वो नसब के लिए करता है। मालूम हुआ एहराज दो किस्म पर है, एक एहराज लिन नसब और एक एहराज लिन तकव्वुम। बात समझ में आ गए। तो इंसान ये जो कीमती चीजें जमा करता है, इकट्ठी करता है, वो किस लिए? मालदारी के लिए भाई, क्योंकि इनकी कीमत होती है भाई। तो मालूम हुआ एहराज दो किस्म पर है, एक एहराज जो है नसब के लिए होता है जैसे मन बीवी के अंदर है, और एक एहराज जो है तकव्वुम की वजह से होता है यानी मालदारी के लिए होता है, और वो जो बाकी चीजें हैं जिनकी खरीदो फरोख्त की जाती है भाई। तो इमाम साहब की दलील चल रही है, इमाम साहब फरमाते हैं कि किसी चीज का कीमत वाला होना ये एहराज के जरिए होगा, और उम्मे वलद के अंदर जो एहराज होता है वो नसब के लिए होता है, वो तकव्वुम के लिए नहीं होता। तो उम्मे वलद के अंदर जो एहराज है वो इसी तरह का एहराज है जैसे अपनी मनकूहा बीवी के अंदर एहराज होता है, और मनकूहा बीवी के अंदर जो एहराज होता है वो तो तकव्वुम की वजह से नहीं होता, कीमत वाला होने की वजह से नहीं होता, बल्कि नसब के लिए होता है। इसी तरह इस उम्मे वलद के अंदर भी जो एहराज है वो नसब की वजह से है। और याद रखो ये एहराज नसब असल है और एहराज लि तकव्वुम ये उसके ताबे है। तो जब एहराज लि नसब पाया जाए तो एहराज लि तकव्वुम का कोई एतबार नहीं है, क्योंकि जब असल मौजूद है तो ताबे की तरफ नजर नहीं की जाएगी, क्योंकि एहराज लि नसब असल है वो मकसूद है और एहराज लि तकव्वुम वो गैर मकसूद हो गया। बात समझ में आ गई। तो इमाम साहेब फरमाते हैं कि ये बांदी जब तक उम्मे वलद नहीं बनी थी, ये आम बांदी थी, उस वक्त इसके अंदर एहराज जो था वो तकव्वुम के लिए था, क्योंकि गुलाम और बांदी की कीमत होती है। लेकिन जब इसको उम्मे वलद बना दिया, अब ये एहराज कौन सा बन गया? एहराज लिन नसब बन गया, और एहराज लिन तकव्वुम वो इसके ताबे हो गया। तो एहराज लिन नसब असल है तो अब एहराज लिन तकव्वुम का कोई एतबार नहीं है। तो यहां इस उम्मे वलद की कोई कीमत नहीं, क्योंकि इसके अंदर एहराज नसब के लिए है, तकव्वुम के लिए है ही नहीं। एहराज लिन तकव्वुम होता फिर कीमत वाली होती, एहराज लि तकव्वुम नहीं तो कीमत वाली भी नहीं है भाई। तो कहते हैं वली अबी हनीफा रहमतुल्लाह, और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्ना तकव्वुम बिल एहराजी की कीमत वाला होना एहराज के जरिए होता है। वही मुहरजतुन लि नसब ला लि तकव्वुमी, और ये जो उम्मे वलद होती है इसको महफूज किया जाता है नसब के लिए, ला लि तकव्वुमी कीमत वाला होने की वजह से नहीं। वल एहराज लि तकव्वुमी ताबिउन, और एहराज लि तकव्वुम जो है वो ताबिउ होता है यानी एहराज लिन नसब के ताबिअ होता है भाई। तो वो ताबिअ है यानी वो गैर मकसूद होता है। वलिहादा ला तसअ लि गरीमिन वला लि वारिसिन, और इसी वजह से ये उम्मे वलद ना तो कर्ज खा के लिए सही करती है और ना वारिस के लिए। अभी मैंने आपको बतलाया कि एक आदमी मर गया और उसके सिर्फ एक उम्मे वलद है और कोई माल है ही नहीं, तो भी ये उम्मे वलद वैसे ही आजाद हो जाएगी, ये वारिसों के लिए सही नहीं करेगी। और ये अलामत है कि ये गैर मुतकव्विम है भाई। और नीस, अगर इस मरने वाले पर दैन हो, तो आपने पढ़ा है कि फिर इस सूरत के अंदर दैन जो है वसीयत पर मुकदम होता है। लिहाजा अगर एक आदमी मर गया और उसने एक मुदब्बर छोड़ा और उसका माल सिर्फ यह मुदब्बर है, तो मुदब्बर के सिर्फ सुलुस ने आजाद होना था, दो सुलुस में उसने सही करनी थी, लेकिन इस मरने वाले पर बहुत सा दैन भी है, तो यह मुदब्बर की आजादी यह तो वसीयत के दर्जे में थी, और दैन क्या होता है वसीयत पर मुकदम, लिहाजा अब मुदब्बर अपनी सारी कीमत में सही करेगा कर्ज खाहों के लिए। तो मुदब्बर मुतकविम है, लिहाजा अगर आका के जिम्मे दैन था तो मुदब्बर सारे दैन के अंदर सही करेगा, और अगर दैन नहीं था और सिर्फ यही माल है तो फिर मुदब्बर का सिर्फ सुलुस आजाद होगा और दो सुलुस में वो वारिसों के लिए सही करेगा। जबकि ये जो उम्मे वलद है ना तो ये कर्जखाहों के लिए सही करती है और ना वारिसों के लिए, बल्कि वैसे ही आजाद हो जाएगी। अगर ये माल होती तो ये क्या करती उनके लिए सही करती। ये दलील है इस बात की कि ये मुतकविम नहीं है। तो कहते हैं वलिहाजा ला तसाली गरीमी वलाली वारिसिन, और इसी वजह से ये जो उम्मे वलद है ना तो किसी कर्जखा के लिए सही करती है और ना किसी वारिस के लिए, ये दलील है इस बात की कि इसकी कोई कीमत नहीं है। बिखिलाफ इल मुदब्बरी, बखिलाफ मुदब्बर के, साहिबैन ने उम्मे वलद को कियास किया था मुदब्बर पर कि मुदब्बर को बेचा नहीं जा सकता लेकिन फिर भी वो मुतकविम है। इसी तरह उम्मे वलद को अगर बेचा नहीं जा सकता तो कोई हरज नहीं, वो फिर भी मुतकविम है भाई। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि बखिलाफ मुदब्बर के कि उसके अंदर जो एहराज है वो नसब के लिए नहीं है भाई। भाई मुदब्बर गुलाम भी हो सकता है और बांदी भी हो सकती है, तो मुदब्बर चाहे गुलाम हो चाहे बांदी हो, वहां पर जो एहराज है वो नसब के लिए नहीं है बल्कि वहां पर एहराज तकव्वु के लिए है। वहां पर एहराज तकव्वुम के लिए है इसलिए उनकी कीमत है, जबकि उम्मे वलद में एहराज नसब के लिए है इसलिए उसकी कोई कीमत नहीं है। तो कहते हैं बिखिलाफ इल मुदब्बरी, बखिलाफ मुदब्बर के कि उसमें एहराज नसब के लिए नहीं हो सकता। वहाजा, और ये इसलिए, अब फर्क बयान कर रहे हैं मुदब्बर और उम्मे वलद के अंदर भाई। तो कहते हैं वहादा, और ये इसलिए, यानी ये मुदब्बर और उम्मे वलद में जो फर्क है वो इस वजह से है कि उम्मे वलद के अंदर आजादी का सबब फिलहाल ही साबित है और मुदब्बर में आजादी का सबब मरने के बाद साबित होगा। भाई मुदब्बर को आका ने क्या कहा कि मेरे मरने के बाद तुम आजाद हो, अंत हुर्रुन बाद मौती या इन मुत्तु फअंत हुर्रुन, अगर मैं मर गया तो तू आजाद है। और आपने पढ़ा है कि जो मुअल्लक होता है शर्त के साथ इंदल अहनाफ वो सबब बनता है इंदा वजूद शर्त, जब शर्त पाई जाएगी उस वक्त ये अंत हुर्रुन आएगा, अभी ये अंत हुर्रुन गोया मौजूद ही नहीं है। तो मुदब्बर को आका ने कहा है अंत हुर्रुन बाद मौती, तो ये आजादी को आका ने मुअल्लक कर दिया अपनी मौत के साथ, तो गोया अभी अंत हुर्रुन है ही नहीं, जब आका मरेगा उस वक्त ये अंत हुर्रुन आएगा और ये मुदब्बर आजाद हो जाएगा। तो मुदब्बर की आजादी का सबब ये अंत हुर्रुन है, इसकी वजह से ये आजाद हो रहा है, लेकिन ये आजादी का सबब फिलहाल मौजूद ही नहीं है, ये फिलहाल कल आदम है, जब आका मरेगा तब ये अंत हुर्रुन आएगा और ये मुदब्बर आजाद हो जाएगा। तो मुदब्बर के अंदर हुर्रियत का सबब फिलहाल मौजूद नहीं, मौत के बाद अंत हुर्रुन आएगा और वो आजाद हो जाएगा, जबकि उम्मे वलद के अंदर हुर्रियत का सबब फिलहाल ही मौजूद है। उम्मे वलद में हुर्रियत का सबब फिलहाल ही मौजूद है, वो इस तरह कि आपने पढ़ा था हुर्मत मुसाहरत का मसला, हुर्मत मुसाहरत के अंदर आपने पढ़ा था कि खावंद पर बीवी के उसूल और फुरू हराम हो जाते हैं और बीवी पर खावंद के उसूल और फुरू हराम हो जाते हैं, बल्कि हलाल वती तो छोड़िए, हराम वती की यानी जिना अगर कोई शख्स करे तो भी जानी और मजनिया के उसूल और फुरू एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं। वजह यह कि यह वती पहुंचाने वाली है औलाद तक, और औलाद जो है वह तो दोनों का जूज है, वाती का भी और मौतुआ का भी, तो दोनों के जुज औलाद में इकट्ठे हो गए, तो ये दोनों गोया एक दूसरे का जुज बन गए। जब एक दूसरे का जुज बन गए तो वाती के उसूल और फुरो मौतुआ के उसूल और फुरो बन गए, और मौतुआ के उसूल और फुरो जो है वो वाती के उसूल और फुरो बन गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे का जुज बन गए। तो एक दूसरे के जो उसूल और फुरो हैं वो अपने उसूल और फुरो बन गए भाई, और अपने उसूल और फुरो तो इंसान पर हराम होते हैं, तो इसलिए वाती पर मौतुआ के उसूल और फुरो हराम हो गए और मौतुआ पर वाती के उसूल और फुरो हराम हो गए। किस वजह से? जुज़ियत की वजह से, कि दोनों आपस में एक दूसरे का जुज बन गए औलाद के अंदर। और औलाद का होना जरूरी नहीं है सिर्फ औलाद तक पहुंचाने का जो सबब है वती, बल्कि दवाई वती से भी यह हुरमत मुसाहरत साबित हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये जो उम्मे वलद है इससे आका की औलाद हुई है, तो जब आका की औलाद हो गई तो आका और ये उम्मे वलद, ये वाती और मौतुआ एक दूसरे के जुज बन गए, क्योंकि औलाद में दोनों के जुज इकट्ठे हो गए, दोनों एक दूसरे के जुज हो गए। तो लिहाजा यहां पर आका और उम्मे वलद के दरमियान जुजियत वाला ताल्लुक आ गया, दोनों एक दूसरे का जुज बन गए। और जब दोनों एक दूसरे का जुज बन गए तो इंसान अपने जुज का तो मालिक नहीं बन सकता। कोई शख्स अपने बेटे को खरीदे तो खरीदते ही बेटा आजाद हो जाता है, क्योंकि बेटा उसका जुज है। तवज्जो है? तो लिहाजा यहां पर जब आका और उम्मे वलद के दरमियान जुजियत वाला ताल्लुक आ गया तो यह तकाजा करता है कि इस बांदी को फिलहाल ही फौरन आजाद हो जाना चाहिए, क्योंकि यह आका का जुज बन गई और अपना जुज इंसान का ममलूक नहीं हो सकता। ये इसी तरह है जैसे हुरमत मुसाहरत के मसले में, हुरमत मुसाहरत के मसले में मियां बीवी एक दूसरे का जुज बन गए, और अपना जुज तो इंसान पर हराम होता है। कोई आदमी अपनी बेटी से निकाह नहीं कर सकता क्योंकि बेटी इसका अपना जुज है, तो अपना जुज इंसान पर क्या होता है? हराम होता है। तो जब मियां बीवी एक दूसरे का जुज बन गए तो यह तकाजा कर रहा है कि यह भी आपस में एक दूसरे पर हराम हो जाएं। एक ही दफा वती करने के बाद मियां बीवी को एक दूसरे पर हराम होना चाहिए, कियास यह तकाजा करता है। लेकिन शरीयत ने तो एक दूसरे पर हराम करार नहीं दिया। मालूम हुआ यहां शरीयत ने जरूरत की वजह से एक दूसरे पर हराम करार नहीं दिया, क्योंकि अगर एक ही वती से औरत हराम होगी तो इंसान तो बकाए नस्ल का मोहताज है, तो वो इंसान मुश्किल में पड़ जाएगा कि अपनी नस्ल को कैसे बाकी रखे। जिस औरत से भी निकाह करेगा एक ही वती से वो हराम हो जाएगी, अब आगे पता नहीं औलाद होती है या नहीं। दूसरी औरत से निकाह करेगा वो भी एक ही वती से, दोनों एक दूसरे का जुज बन गए, वो भी हराम हो जाएगी। तो लिहाजा चूंकि मियां बीवी में हाजत और जरूरत थी बकाए नस्ल की, इसलिए वहां शरीयत ने इन दोनों को एक दूसरे पर हराम करार नहीं दिया। बात समझ में आ गई? तो यहां पर भी जब आका और उसकी उम्मे वलद जो है इनके दरमियान जुजियत वाला ताल्लुक आ गया तो ये जो बांदी है ये आका का जुज बन गई, तो दोनों को भी एक दूसरे पर हराम होना चाहिए। लेकिन यहां भी शरीयत ने जरूरत और हाजत की वजह से इस उम्मे वलद को आका पर हराम करार नहीं दिया। तो इमाम साहेब की दलील चल रही है। इमाम साहेब फरमाते हैं उम्मे वलद और मुदब्बर के दरमियान फर्क है। मुदब्बर के अंदर जो आजादी का सबब है वो अंतहुर्रुन बादा मौती है, और ये अंतहुर्रुन अभी मौजूद ही नहीं है, ये जब आका मरेगा तब ये अंतहुर्रुन पाया जाएगा और गुलाम आजाद हो जाएगा। जबकि उम्मे वलद के अंदर जो आजादी का सबब है वो ये है कि वो आका का जुज बन गई है, और ये सबब तो फिलहाल ही मौजूद है उम्मे वलद में। तो यह तकाजा करता है कि फिलहाल ही उम्मे वलद को आजाद होना चाहिए, आका की मिल्कियत भी इससे साकित हो जाए और इसकी कीमत भी खत्म हो जाए, क्योंकि जब यह आजाद हो जाएगी, आजाद तो किसी का ममलूक नहीं होता, तो मिल्कियत भी खत्म होनी चाहिए इस बांदी पर से। और जब आजाद हो गया, आजाद तो माले मुतकविम नहीं होता, तो इसकी कीमत भी साकित हो जानी चाहिए। तो बांदी फिलहाल ही आका का जुज है, जब फिलहाल ही आका का जुज है तो इसको आजाद होना चाहिए, और जब आजाद होगी तो आका की इस पर मिल्कियत भी बाकी नहीं रहेगी और नीज इसकी कीमत भी साकित हो जाएगी। लेकिन आका की मिल्कियत इस पर से खत्म नहीं की शरीयत ने। क्यों नहीं खत्म की? जरूरत और हाजत की वजह से, कि आका इससे नफा उठा सके, इसके जरिए अपनी नस्ल को बाकी रख सके और औलाद चाहता है तो वो भी इसे पैदा कर सके भाई। तो शरीयत ने जरूरत और हाजत की वजह से इस उम्मे वलद के आजाद होने का फैसला नहीं किया ताकि आका मौत तक इससे नफा उठा सके भाई। तो लिहाजा मिल्कियत तो साकित नहीं होगी आका की जरूरत और हाजत की वजह से, लेकिन कीमत जो है इस उम्मे वलद की साकित हो जाएगी क्योंकि वहां कोई हाजत और जरूरत नहीं है कीमत को बाकी रखने की। फिर सुने, ये उम्मे वलद में फिलहाल ही आजादी का सबब मौजूद है और वो क्या कि ये आका का जुज बन गई है और ये जुजियत दो चीजों का तकाजा कर रही है कि आका की मिल्कियत भी इस पर से खत्म हो जाए या आजाद हो जाए और इसकी कीमत भी खत्म हो जाए, क्योंकि जब आजाद होगी तो आजाद की कोई कीमत नहीं होती। तो उम्मे वलद आका का जुज है, ये जुजियत तकाजा करिए दो चीजों का कि इस बांदी पर से मिल्कियत भी साकित हो जाए और इसकी कीमत भी साकित हो। लेकिन आका की मिल्कियत शरीयत ने खत्म नहीं की जरूरत और हाजत की वजह से कि वो मौत तक इस बांदी से नफा उठा सके। तो आका की मिल्कियत तो साकित नहीं हुई जरूरत और हाजत की वजह से, लेकिन दूसरी चीज जो थी वो कीमत तो साकित हो जाएगी क्योंकि वहां पर कोई हाजत और जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वहादा ली अन्न सबब फीहा मुतहक्किकुन फिल हाली, और ये इसलिए क्योंकि इस बांदी के अंदर आजादी का जो सबब है, इस उम्मे वलद के अंदर जो आजादी का सबब है वो फिलहाल ही पाया जा रहा है। तो अस सबब से क्या मुराद है, सबब हुर्रियत मुराद है। तो कहते हैं वहादा, और ये इसलिए ली अन्न सबब फीहा मुतहक्किकुन फिल हाली, इसलिए क्योंकि उम्मे वलद के अंदर आजादी का सबब फिलहाल ही पाया जा रहा है। वह हुवल जुज़ियतु साबितु बिवासितिल वलदी, और ये वो जुज़ियत है जो वो औलाद के वास्ते से साबित है कि आका और उम्मे वलद एक दूसरे का जुज बन गए हैं औलाद के वास्ते से। अला मा उरिफा फी हुर्मतिल मुसाहरति, उस वजह से जिसको हुर्मत मुसाहरत के मसले में जान लिया गया। इल्ला अन्नहु लम यज़हर अमलुहु फी हक़िल मिल्की, मैंने आपको क्या बताया कि बांदी के अंदर आजादी का सबब फिलहाल ही मौजूद है। यह क्या तकाजा कर रहा है, ये दो चीजों का तकाजा कर रहा है, आका की मिल्कियत भी साकित हो जाए और बांदी की कीमत भी साकित हो जाए। लेकिन आका की मिल्कियत साकित नहीं हुई जरूरत की वजह से, लेकिन कीमत साकित हो जाएगी क्योंकि कीमत को बाकी रखने की कोई जरूरत और हाजत नहीं है। तो इसलिए हमने कहा कि उम्मे वलद की कोई कीमत नहीं है। तो कहते हैं इल्ला अन्नहु लम यज़हर अमलुहु फी हक़िल मिल्की, मगर आजादी का यह जो सबब है इसका अमल जाहिर नहीं होगा आका की मिल्कियत होने के हक में। जरूरत लिंतिफाई, नफा उठाने की जरूरत की वजह से कि आका इस बांदी से नफा उठा सके मौत तक। भाई बात समझ में आ गई, आजादी का जो सबब है उसका अमल जाहिर नहीं हुआ आका की मिल्कियत के साकित होने में, लेकिन उसकी कीमत के साकित होने में उसका अमल जाहिर होगा और कीमत साकित हो जाएगी। तो कहते हैं इल्ला अन्नहु लम यज़हर अमलुहु, मगर यह कि उस सबब हुर्रियत का अमल जाहिर नहीं हुआ फी हक़िल मिल्की, आका की मिल्कियत होने के हक में। जरूरत लिंतिफाई, आका का फायदा उठाने की जरूरत की वजह से। फामिला सबब फी इसकाति तकव्वुमी, तो उस सबब हुर्रियत ने अमल किया तकव्वुम के साकित होने में कि इसका तकव्वुम साकित हो गया। वफिल मुदब्बरियन आकिदु सबब बादल मौती, और मुदब्बर जो है उसके अंदर आजादी वाला सबब जो है वो मुनाकिद होगा आका की मौत के बाद। वंतना उल्बै फीही लितहक्कुकी मकसूदिही, यहां से साहिबैन को जवाब दे रहे हैं। साहिबैन क्या फरमाते थे कि मुदब्बर को बेचा नहीं जा सकता फिर भी वो मुतकव्विम है, इसी तरह उम्मे वलद को बेचा नहीं जा सकता लेकिन फिर भी वो मुतकव्विम है। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि मुदब्बर जो है कियास तो ये तकाजा करता है कि मुदब्बर की बै ममनू नहीं होनी चाहिए, मुदब्बर की बै ममनू नहीं होनी चाहिए, इसकी बै जायज होनी चाहिए। लेकिन मुदब्बर की बै को इसलिए ममनू करार दिया गया ताकि आका का मकसद पूरा हो सके। आका का क्या मकसद था, वो उस मुदब्बर को कह रहे हैं मेरे मरने के बाद तू आजाद है। आका का क्या मकसद है, आका चाहता है मेरे मरने के बाद ये आजाद हो, अगर वो मुदब्बर को बेच देगा तो आका का मकसद पूरा नहीं होगा, फिर तो कोई और मालिक बन गया, वो तो आका के मरने के बाद आजाद नहीं होगा। और आका का क्या मकसद है कि मेरे मरने के बाद ये आजाद हो जाए, तो आका के मकसद के पूरा करने के लिए हमने मुदब्बर की बै को ममनू करार दे दिया कि इसको बेचा नहीं जा सकता ताकि आका का मकसद पूरा हो जाए, आका के मरने के बाद यह आजाद हो जाए। तो कहते हैं वम्तिना उल बै फी ही, और मुदब्बर के अंदर बै का मुमतने होना लि तहकूकी मकसूदी ही, वो आका के मकसूद के पाए जाने के लिए है कि आका का मकसूद पाया जाए, वो पूरा हो जाए। फफ ताराका, तो दोनों जुदा हो गए, यानी मुदब्बर और उम्मे वलद एक दूसरे से जुदा हो गए, दोनों में फर्क है भाई, एक में एहराज लि नसब है और एक में एहराज लि तकव्वुम है भाई, तो आप एक को दूसरे पर कियास नहीं कर सकते। वफी उम्मी वलदिन नसरानी ये कजैना भी मुकातबतिहा अलैही, अब साहिबैन ने इसको कियास किया था ईसाई की उम्मे वलद पर, कि ईसाई की उम्मे वाला जब मुसलमान हो जाए तो उससे साई करवाई जाती है, ये इस बात की अलामत है कि ये मुतकव्विम है, तो उसका जवाब दे रहे हैं कि उम्मे वलद की कोई कीमत नहीं है, लेकिन वहां पर उस ईसाई की जो उम्मे वलद मुसलमान हुई है हमने उसको मुकातबा का दर्जा दे दिया ताकि दोनों की रियायत हो जाए, ताकि उस ईसाई आका की भी रियायत हो जाए और उम्मे वलद की भी रियायत हो जाए। उम्मे वलद की रियायत यह होगी कि इसे ईसाई के तहत रहने से निजात मिल जाएगी, और आका की रियायत यह होगी कि उसको उसकी कीमत मिल जाएगी भाई, तो दोनों की रियायत हो गई। वैसे तो उम्मे वलद पर सही नहीं है, लेकिन हमने वहां पर दोनों की रियायत रखने के लिए उस उम्मे वलद को मुकातबा वाला दर्जा दे दिया, और मुकातबा तो बदले किताबत अदा करके आजाद होती है, तो लिहाजा यह भी सही करके अपनी कीमत अदा करेगी और आजाद हो जाएगी। तो कहते हैं वफी उम्मी वलदिन नसरानी ये, और ईसाई की उम्मे वलद के मसले में कजैना भी मुकातबतिहा अलैही, हमने फैसला किया उस उम्मे वलद के मुकातबा होने का अलैही उस ईसाई के खिलाफ, दफअन लिज़ररी मिनल जानिबैनी, दोनों जानिब से नुकसान को दूर करने के लिए। व बदलुल किताबति ला यफ्तकिर वुजूबहु इलत तकव्वुमी, और जो बदल किताबत होता है उसका वजूब वो मोहताज नहीं है कीमत वाला होने का। ये जो ईसाई की उम्मे वलद थी जो मुसलमान हो गई, ये मुकातबा के दर्जे में हो गई, और अब जो ये पैसे अदा करेगी वो बदले किताबत के दर्जे में हुआ, और बदले किताबत के वाजिब होने के लिए गुलाम या बांदी का मुतकव्विम होना जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह बदलुल किताबती लायफ तकीरु वजूबहु इलत तकव्वुमी, और बदले किताबत जो है मोहताज नहीं है इसका वाजिब होना इलत तकव्वुमी मुतकव्विम होने का, बदले किताबत के वजूब के लिए उस गुलाम या बांदी का मुतकव्विम होना जरूरी नहीं है। तो यह माना है वह बदलुल किताबती लायफ तकीरु वजूबहु इलत तकव्वुमी, और बदले किताबत जो है उसका वजूब जो है वह तकव्वुम का मोहताज नहीं है। बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।